तो कल हमने चर्चा की जो परिचय है शोक्ष की उसमें, तो उसमें हमने चार मुद्दों की चर्चा की। सबसे पहले कैसे वैदिक शास्त्रों में एक प्रगतिशील तो हमने देखा कैसे कि वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान है वो प्रगतिशील है, पहले कर्मकांड, फिर ज्ञानकांड और फिर उपासना कांड। और कर्मकांड अधिकांश से चार विधों में बताया गया, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। जो ज्ञानकांड है वो उपनिषदों में बताया गया है, और जो उपासना कांड है भक्ति एवं पुराणों में और खास करके श्रीमद्भागवत में बताया गया है शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में। फिर उसके बाद में हमने देखा कैसे कि जो भगवान के बारे में जो भगवान का व्यक्तित्व है तो उपनिषदों का क्या महत्व है। प्रभुपाद जी ने ईशोपन तात्पर्य क्यों लिखा है कि 108 उपनिषदों में से 10 प्रधान है, उनमें से सबसे पहले जो गणना आती है वो ईशोपनिषद की है। तो इसी जो ईशोपनिषद उपनिषद साधारणतः ज्ञान या ब्रह्म ज्योति में लीन होना निर्विशेषवाद के बारे में सिखाते हैं ऐसा समझा जाता है। तो उन्हीं उसी ईशोपनिषद के आधार पर यदि हम भक्ति या भगवान की स्थापना करते हैं तो फिर वह कैसे है कि मायावादियों के इलाके में जाकर उनको हराने के समान है, इसलिए हमारा महत्वपूर्ण है। फिर हमने देखा कैसे साधना और साध्य दो चीजें हैं आध्यात्म में, कि क्या प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है। तो क्या प्राप्त करना है यह ज्ञान में भगवद गीता और ईशोपनिषद से मिलता है कि भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान एक व्यक्ति है ईशोपनिषद से पता चलता है, और भगवद गीता से वो व्यक्ति कृष्ण है ये पता चलता है। कृष्ण शब्द का उल्लेख ईशोपनिषद में नहीं आता है, परम सत्य ब्रह्म का उल्लेख आता है। और फिर साधन को प्राप्त कैसे करना है, जो भक्ति से प्राप्त करना है यह साधन भी भगवद गीता में प्रस्थापित होता है, पर भक्ति कैसे करनी है यह उपदेशामृत भक्ति सांसद में बताया गया है। इस तरह से चार ग्रंथ है हमारे भक्ति शास्त्र के, इसके द्वारा जो परम साध्य और परम साधन ये पूरी तरह प्रस्थापित हो जाता है। और फिर हमने संक्षिप्त रूप में देखा कैसे कि जो कभी कभी कहते हैं कि भगवान निरूप है, निराकार है, तो वह हमें पूरे संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो फिर वह गलत नहीं हुए हैं, पर वह पूर्ण ज्ञान नहीं है। उदाहरण कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कपड़े कोई किसी ने कपड़े शर्ट पैंट नहीं पहनाना, उदाहरण याद होगा। इस तरह से हमने जो ईशोपनिषद का महत्व और उसका कैसे भूमिका है सारे शास्त्रों के मर्म को जानने की उसके बारे में चर्चा की। फिर कल हमने पहला श्लोक शुरू किया था, तो हम पहले श्लोक को थोड़ा रिसाइट करेंगे। अभी जो इन्वोकेशन है आप सबके पास उपनिषद जिनके पास है आप खोल सकते हैं। इन्वोकेशन जो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, साथ में आपको पता होगा इसको साथ में
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
श्लोक जो है बड़ा रहस्यमय श्लोक है कि पूर्ण 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 आता है तो उसके अंत में कई बार लोग पूर्ण भ्रम में पड़ जाते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। तो ये जो श्लोक है ये वास्तव में ईशोपनिषद का विभाग नहीं है, इसीलिए हम पूर्व आचार्य की टिप्पणी देखते हैं, चाहे वंदे विद्याभूषण जी की हो या भानु महाराज है, वो अनेक पूर्व आचार्य टिप्पणियों को उन्होंने भाष्य को उन्होंने भाषांतरित किया है। तो उन्होंने चार आचार्यों की कमेंट्री जो है एक किताब में लिखी हुई है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ईशोपनिषद के खिलाफ कर लिखा, हमारे संप्रदाय ने भक्ति विनोद ठाकुर और वंदे विद्याभूषण इन दिनों ने ईशोपनिषद के भाष्य लिखा हुआ है। कृषि संप्रदाय में वेदांत देशिका ये रामानुचार्य के एक प्रधान अनुयायी थे, तो उनको तर्क शिरोमणि बताया जाता है, तर्क रत्न या तर्क शिरोमणि, तो उन्होंने भी भाष्य लिखा हुआ है, उसका भी भाषांतर किया है। और माधव संप्रदाय माधवाचार्य स्वयं स्वतः ही लिखा हुआ है। तो चार भाष्य उससे मैं थोड़ा थोड़ा उल्लेख लूंगा हमारे ईशोपनिषद की क्लासेस में। हम प्रधान रूप से प्रभुपाद जी के जो भाष्य है उस पर जोर देंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, पर इन सबके चार आचार्य भाष्य जो है उसमें उसका जो भाष्य का शुरुआत होती है वो ईशावास से शुरुआत होती है, ओम पूर्ण से नहीं होती है। तो ये एक दिस इज ओम ओम पूर्ण मदापूर्ण, दिस इज स्टैंडर्ड वेदिक इन्वोकेशन। ये एक महत्वपूर्ण और सर्वज्ञ जैसी वैदिक प्रार्थना है, तो क्योंकि उससे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तावित होता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद की शुरुआत में इसको लिया हुआ है। तो इस श्लोक का मतलब क्या है कि अगर हम ओम पूर्णम, साधारणतः ओम शब्द आता है तो यह भगवान को उल्लेख कर सुनाता है, परम सत्य को उल्लेख कर सुने, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो ओम बोलते हैं तो भगवान सत्रहवें अध्याय में ओम तत्सत इसका उल्लेख करते हैं आखिरी पांच श्लोकों में। तो ओम ओम तो परम सत्य बुला रहे, तो बता रहे परम सत्य पूर्ण है, ओम पूर्णम अदापूर्णम, ये जो है भौतिक जगत यह भी पूर्ण है। पूर्ण क्यों पूर्ण है जगत, स्वर्ण अगले श्लोक में बता, अगले पंक्ति बता रहे हैं पूर्णा पूर्णम उदच्यते। अगर भगवान ने जो बनाया है, भगवान परिपूर्ण है, तो फिर वो जो उनकी जो कृति होगी, उनकी जो निर्मिति होगी वह भी परिपूर्ण है। पूर्णा पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय, तो वो पूर्ण से अनेक पूर्ण वस्तु निकलते हैं बाहर, पूर्णम एवावशिष्यते, तो ये परम सत्य है वो पूर्ण ही रहते हैं, उनमें कोई अपूर्णता नहीं आती है। तो ये भगवान का रहस्य, परम सत्य का रहस्यमय गुण है कि उनमें से बहुत सी चीजें निकलती है पर उससे वो व्यक्ति कम उनमें कोई कमी नहीं आती है। ऐसे साधारण दुनिया में अगर कोई व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपए है तो उसमें से अगर 50,000 रुपए निकल रहे कितना बच जाते हैं, 50,000 ही बच गए, तो वो पहले जो थे वो कम हो गए। तो साधारण से हम भौतिक कोई भी चीज लेते हैं उसमें से कुछ निकालते हैं तो जो पहले बचता है वो कम रहता है, पर भगवान ऐसे है कि उनमें से कितना भी बाहर निकले वो खुद वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान खुद को विस्तार कर सकते हैं। जब हम कुछ देते हैं तो साधारणता हमारे पास जो है उसका ह्रास होता है, इसकी कमी होती है, पर भगवान विस्तार कर सकते हैं। और इसका इसका प्रमाण भागवत में देखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अनेक ग्वालों और गावों के रूप में विस्तार होते हैं, पर भगवान कृष्ण स्वयं वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कुछ कमी नहीं होती है। रासलीला में भगवान विस्तार होते हैं, हर एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, पर जो भगवान है वह परिपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए गणित में जो इंफिनिटी और डू यू कॉल इंफिनिटी असीमता, इंफिनिटी असीमता ये गणित का धारणा है कि असीमता में से हम कितना भी बाहर निकालते हैं फिर भी असीमता असीमितता बची रहती है। तो भगवान असीमित है, इसीलिए उनमें से कितनी भी कमी करते हैं कभी कम नहीं होता है। तो अभी जो पूर्णम ये परम सत्य पूर्ण है वो क्या है, तो वो भगवान है। तो उसको हमने मैं कल चर्चा करा था कैसे कि ब्रह्म ज्योति परमात्मा और भगवान वास्तव में तीन व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे ब्रह्म ज्योति है, यहाँ पे परमात्मा है, यहाँ पे भगवान है, ऐसे नहीं है। ये तीनों एक ही व्यक्ति है, वास्तव में एक ही तत्व है। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक पता है किसी को जो इन तीनों के बारे में बताता है, वदन तत्विदस्य तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शक्यते। तो जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का दूसरा अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, और संपूर्ण भागवत में से किसी एक अध्याय से रूपा जी ने बहुत अधिक श्लोक अगर कोट किए हैं तो वही अध्याय है, दूसरा अध्याय। तो उसमें से 11वां श्लोक आता है, वो जो परम तत्व है, परम सत्य है, वो क्या है, अद्वय ज्ञान है। वो द्वय नहीं है, अद्वय है, अद्वय मतलब उसमें कुछ भेद नहीं है, वो तीनों एक ही है। और क्या है तीन, ब्रह्मेति परमात्मेति परमात्म भगवान की शब्द थे। तो इसके पहले भी श्लोक में बताते हैं कि जब तश्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ते आत्मचात्मान भक्त्या श्रुति रहितया, कि जब वो ज्ञान जब वो परम सत्य का खोज करने वाला साधक है वो भक्ति के द्वारा चिंतन करता है तो परम सत्य को समझ लेता है। तो क्या समझता है परम सत्य को, तो इस श्लोक में बताया गया है कि तीन तत्व साक्षात्कार होता है परम सत्य का, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। और जब तीन तत्व साक्षात्कार होता है तो ये तीनों अद्वय है, तीनों एक ही है। जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था कि एक अनपढ़ व्यक्ति अगर किताब को देखता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किताब को देखता है तो किताब एक ही है, वो उसका उसकी जो समझ अनपढ़ व्यक्ति की समझ है और जो पढ़े लिखे व्यक्ति की समझ है वो समझ अलग है पर किताब एक ही है। ठीक उसी तरह से वास्तव में हम जो ब्रह्म ज्योति को ज्ञान ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानियों को अनपढ़ नहीं कह सकते, वो बहुत पढ़े लिखे है, बहुत विद्वान है, पर जो भक्ति का साक्षात्कार है उसके तुलना में उनका ज्ञान कम है। तो इसीलिए वस्तु एक ही है, वो जो तत्व है अद्वय तत्व है वो, पर उसकी समझ है वो अलग है। तो इसीलिए एक परम सत्य है, कुछ लोग उसको ब्रह्मन के रूप में समझते हैं, कुछ लोग परमात्मा और कुछ लोग भगवान के रूप में। प्रभुपाद जी इसके लिए एक उदाहरण दिया करते हैं, कैसे वही चीज को हम और खरीद जाते हैं तो अच्छी तरह समझ में आती है। फिर बताया उदाहरण सूर्य का उदाहरण देते प्रभुपाद जी। सूर्य को दूर से देखते हैं तो क्या दिखता है,
सिर्फ एक सर्वव्यापी ज्योति दिखती है। पास में आते ये एक जगह है जहां से एक सर्कल है, एक वर्तुल, एक केंद्र है जहां से ये आ रहा है, पर और पास में आएगा तो वहां पर सूर्य देव है। एक जरूरत से दूर से देखते तो परम सत्य क्या है, ये ब्रह्मन है। उसके और कर जाते हैं तो वास्तव में ये ब्रह्मन की अच्छी प्रेरणा है, वो है परमात्मा और उसके पीछे भगवान है। तो परमात्मा और भगवान, परमात्मा भी एक व्यक्ति है, चतुर्भुज चार हाथ वाले चतुर्भुज रूप वाले हैं, पर परमात्मा लीला नहीं करते हैं। परमात्मा क्या करते हैं, उदासीन वदासीनम, वो बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, जो भी कहना है। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया, चतुराई माता जी जो थी प्रभुपाद जी का एक पहले दिन शिष्य थी, तो उनको प्रभुपाद जी ने बताया कि आप जो परमात्मा है हृदय में उनका चित्रण करो। तो चित्रण करने लग गई, फिर प्रभुपाद जी बोला पूछे, प्रभुपाद जी परमात्मा जो हृदय में खड़े हैं या बैठे हैं? तो ये समझने के लिए योगियों को हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है। तो आश्चर्य सोचिए सारा सवाल पूछ रही हो प्रभुपाद जी को, ये समझने के लिए बड़ा गुरगुरी बात है, ये समझने के लिए योगियों को हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है। तो उसके चेहरा थोड़ा विस्तृत हो गया, प्रभुपाद जी बोले तो खड़े है स्टैंडिंग, तो वो बड़े उत्साह से खड़े हुए हैं कि हमें मदद करना चाहते हैं, पर फिर भी परमात्मा जो लीला नहीं करते, लीला कौन करते हैं, भगवान। तो इसीलिए परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब जो परम सत्य के चित्त का साक्षात्कार हुआ है। चित्त मतलब वो चेतन है, वो जागरूक है, वो देख रहे हैं, वो साक्षात्कार हुआ है। पर वो प्रेम करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान उनके साथ क्या करता है, यह समझते नहीं है। तो इसीलिए उस समय आनंद का जो साक्षात्कार है, जो आनंद का पहलू है भगवान का, उसका अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ है। और आनंद के पहलू का साक्षात्कार कब होता है, जब व्यक्ति भक्ति से भगवान की हो जाता है। अरे जो निर्विशेषवादी आध्यात्मिक नेता वगैरह होते हैं उनके नाम होते हैं आनंद में बाई बार अंत होता है, पर वास्तव में उनका नाम आनंद से अंत होता है और उनके जीवन का आनंद उनके नाम से अंत हो जाता है। देयर नेम एंड्स विद आनंद एंड देयर आनंद एंड्स विद देयर नेम। क्यों कहते हैं, जब आनंद के परम स्रोत जो भगवान है उनको अगर ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि वो है ही नहीं, तो फिर प्रेम नहीं है तो आनंद कहां से आएगा। इसके बारे में आप विस्तार बात भी करेंगे, पर यह प्रभुपाद जी अपने पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि कैसे परम सत्य के तीन स्तर है पर परम सत्य एक ही है, पर उसको समझने के अलग अलग स्तर है। तो अभी सबसे पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य है बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही नियमबद्ध होता है, अच्छी तरह से लिखा होता है। तो ओम पूर्ण वदः, सबसे पहले वो परम सत्य पूर्ण क्या है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो दूसरा जो पुष्ट है, जो पहला पैराग्राफ खत्म हो रहा है प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं, प्रभुपाद जी का पूर्ण या परम सत्य पूर्ण भगवान है।
ये जब गारगाशुक होता है ये बता रहे हैं कि कैसे भगवान परम पूर्ण है और फिर ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम् ये जगत पूर्ण है। तो जो दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है उस परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है और वैसा की सब उन्हीं के समान पूर्ण है। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये दूसरा पैराग्राफ बता रहा है कैसे भौतिक जगत पूर्ण है। भौतिक जगत पूर्ण है, भौतिक जगत की कोई कमी नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है। और प्रभुपाद जी अलग अलग इसके बारे में उदाहरण देते हैं कि ये भौतिक जगत को पालन करने के लिए भौतिक जगत में ही पूरी नियंत्रता है। प्रभुपाद जी यह बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहीं दिखते नहीं है। आप अगर हम कहते हैं कि इतना सुंदर गुलाब है, उसकी इतनी खुशबू है, उसका इतना सुंदर रूप है, ये अपने आप निर्मित कैसे कैसे आ सकता है, ये भगवान ने निर्मित की है। तो नास्तिक लोग बोलते हैं कहाँ भगवान को आप डालते हैं बीच में, हम एक बीज डालते हैं जमीन में, उसको पानी डालते हैं, उससे पेड़ आता है, पेड़ से फूल आ जाता है, भगवान कहाँ आते हैं, भगवान है ही नहीं। तो वास्तव में ये भगवान के न होने का सबूत नहीं है, ये भगवान के परिपूर्ण मैनेजमेंट, परिपूर्ण प्रस्थापन योजनाबद्धता का सबूत है। प्रभुपाद जी ये बोलते हैं अपने विषय को कि परफेक्ट मैनेजमेंट मीन्स एवरीथिंग हैपेंस एंड इट अपीयर्स एज़ इफ नोबडी इज़ डूइंग इट। जब परफेक्ट मैनेजमेंट क्या है, परिपूर्ण व्यवस्थापन क्या है कि सब कुछ हो जाता है पर ऐसा लगता नहीं कोई कोई कर रहा है। अगर मान लीजिए अभी आप प्रसाद के लिए जाते हैं तो बराबर समय से प्रसाद प्लेट आ जाता है, प्लेट होते हैं वहां पे अवेलेबल, प्रसाद होता है, सभी के लिए कोई होता है, कोई फिर पढ़ने के लिए होता है, तो ये अच्छा मैनेजमेंट है। पर अगर आप व्यवस्थापन करें तो आपको जानते हैं कितना इसके पीछे योजना करना पड़ता है। जो व्यक्ति कुकिंग करने वाले हैं, जो सर्विंग करने वाले हैं, ट्रांसफरिंग करने वाले, सबको लाना पड़ता है समय। पर अच्छा मैनेजमेंट मतलब क्या, कोई ऐसे लग रही भागदौड़ कर रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं, सब कुछ अपने अपने जो भूमिका है अच्छी तरह से करते हैं और ऐसे लगता है सब कुछ अपने स्वाभाविक रूप से हो रहा है, तो उसको अच्छे मैनेजमेंट कहते हैं। तो भगवान के ऐसे मैनेजमेंट, ऐसे व्यवस्थापन है, कैसे लगता है कुछ कर नहीं रहा है पर सब कुछ अपने आप हो जाता है। इसीलिए भागवत में श्लोक आता है कि मत भयादी पातोयम मत्स्यति इंद्र दहति अग्नि सूर्य तपति मत भयाद। तो क्या कहते हैं वो कपिल देव जी कि जो सूर्य है वो बराबर समय पे आता है, समय पे जाता है, जो वायु है अच्छी तरह से प्रवाह कर रही है, क्यों होता है मत भयाद, मेरे भय के कारण, मतलब मेरे आदेश के अनुसार वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भौतिक जगत की यंत्रणा भगवान ने इतनी अच्छी तरह से बनाई है कि ऐसे लगता है कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो जो अगर हमको इस भौतिक जगत का व्यवस्थापन दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई व्यवस्थापक है नहीं, वास्तविक व्यवस्थापक इतना अच्छा है कि उसको बार बार बीच बीच में ये करो वो करो ये करो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उदाहरण मैं स्पष्ट बता पाया हूँ। अनुभव मैनेजमेंट, अगर आप कोई अच्छा व्यक्ति है जो मैनेजर है और उसके अधीन जो है वो भी अच्छे व्यक्ति है, क्योंकि मैनेजर को बार बार बोलना नहीं पड़ता ये करो वो करो वो करो, सब कुछ अपने आप लगता है। भगवान का व्यवस्थापन इतना अच्छा है कि कुछ दिखता ही नहीं मैनेजमेंट हो रहा है, पर अगर हम विचार करेंगे हर एक चीज के पीछे मैनेजमेंट लगता है। यहाँ तक कि इसका भगवान 15 श्लोक में, 15वें अध्याय में जो 12 से 15 श्लोक है उसमें वर्णन करते हैं कि सारा सृष्टि चलाते हैं, वो कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, भगवान बोलते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, जब हम खाते हैं तो हम खाते हैं और भूल जाते हैं, हम हमारे पचन क्रिया को तभी याद करते हैं जब पचन क्रिया काम नहीं करती है, बाकी कभी याद ही नहीं करते। तो इंग्लिश में कहते हैं गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट एंड फॉरगेट। जब भगवान देते हैं और माफ कर देते हैं तो हम लेते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो वास्तव में भगवान बोलते हैं पचन, तो वैज्ञानिकों ने एक बार विचार किया कि आजकल लोगों को पचन का बहुत समस्या आ रही है, तो क्या सब कुछ कृत्रिम बनाने का प्रयास करते हैं, तो किसी का हाथ टूट गया तो कृत्रिम हाथ लगा देते हैं, किसी का आंख खराब हो गया तो कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते हैं, वो अगर कोई हृदय काम नहीं करा तो पेसमेकर लगा देते हैं। तो सोचा कि हम क्या एक ऐसे कृत्रिम पचन मशीन बना देंगे, पचन यंत्र बना देंगे और पेट में लगा देंगे जिससे कि व्यक्ति को समस्या ना है पचन की।
पर जब उन्होंने संशोधन आगे गंभीरता से करने का प्रयास किया तो देखा कि जो पचन है वो इतना जटिल है. आप जानते हैं कि पचन की जो क्यू होती है एलिमेंट्री कैनाल वो बहुत लंबी होती है. जो शरीर है शरीर से लगभग 12 से 15 पारा गुना लंबे हो कैनाल होता है और इतने सारे प्रक्रिया होते हैं उसमें. तो उनको पता चला कि हमको एक मशीन से काम नहीं चलेगा, एक फैक्ट्री लगेगी अंदर और फैक्ट्री भी इतनी लंबी है कि कम से कम 2 मैन लंबी फैक्ट्री हो जाएगी. तो उन्होंने छोड़ दिया वो प्लान, वो कर नहीं सकते बोले. तो उन्होंने कहा कि एक जब एक खाना खाते हैं एक दिन का, तो खाना जब पचाने के लिए इतनी शक्ति लगती है पेट में कि वो शक्ति कौन लगा रहा है हम पता नहीं, हम खा लेते हैं भूल जाते हैं. पर वास्तव में जो सारी चीज पचन करने की शक्ति लगती है वो वास्तव में भगवान ही दे रहे हैं. भगवान भगवता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं, ओम विश्वान प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम. बोलते हैं कि मैं वैश्वानर के रूप में आपके पेट में बैठा हूँ और मैं ही आपके जो वचन है उसको आपका आपके जो अन्न है पचन करता हूँ. तो वास्तव में भले ही वैज्ञानिक न माने कि भगवान ने पचन करा रहे हैं और वो कह रहे हैं पचन आप पेट पे डाल देते हो पचन हो जाते हैं आप कुछ रसायन आ जाते हैं, पर वास्तव में इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि बड़े बड़े व्यवस्थापन है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक साथ में आकर ऐसा मशीन नहीं बना सकते. इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोई व्यवस्थापक दिख नहीं रहा है उसका ये मतलब नहीं कि व्यवस्थापक है नहीं. वास्तव में व्यवस्थापक इतना अच्छा है कि वह दिखाई नहीं देता है कि उसको उसको बार बार आके दखलंदाजी नहीं करनी पड़ती, ये करो वो करो, इतना अच्छा व्यवस्थापन कर लेता है. तो इस तरह से ये भौतिक जगत जो है पूर्ण है. भौतिक जगत के व्यवस्थापन के लिए बार बार भगवान को भी दखलंदाजी नहीं करनी पड़ती है. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिक जगत अपनी योजना के अनुसार निर्मित होता है. एक योजना होती है, ऐसे अगर हम अगर हम प्रसादन चला रहे हैं तो क्या 5 बजे प्रसादन चालू से 4:30 बजे प्रसाद चालू होता है, 5:30 बजे रहते हैं, बाद में खत्म हो जाता है. तो अपने समय चालू होता है, समय चलता है, समय बंद हो जाता है. तो वैसे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भौतिक जगत का अपना समय है. समय पर चालू होगा ब्रह्मा जी के 100 साल तक रहेगा और फिर चला जाएगा. ब्रह्मा जी के 1 दिन तक रहेगा, उसमें जो प्रलय होता है वो आराधा प्रलय ब्रह्मा जी के 1 दिन के बाद होता है, पूर्ण प्रलय ब्रह्मा जी के जीवन के अंत पे होता है. तो अपने कालावधि के अनुसार वो निर्मित होता है, पालन करता है और फिर नाश हो जाता है. तो इस तरह से भौतिक जगत पूर्ण है. ये दूसरा पॉइंट कृपा जी बताते हैं. और फिर जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थिर अभिव्यक्ति पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से नष्ट हो जाती है. फिर प्रभुपाद जी बताते कैसे हम सब भी भगवान से आए हैं. जब भगवान कहते हम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ मुझसे आता है, मतलब न केवल भौतिक जगत भगवान से आ रहा है, हम भी भगवान से आ रहे हैं. तो तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे हम सब भी पूर्ण है. हम सब भी पूर्ण है, छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे वे पूर्ण की अनुभूति कर सके. तो अभी हम सब पूर्ण कैसे हैं. वास्तव में हम साधना को कहते हैं कि हम भगवान से निर्भर है, हम भगवान के अंश है. भगवत कौन सा श्लोक कहता है कि हम सब भगवान के अंश है, ममैव अंशो जीवनम, 15वें अध्याय 7वां श्लोक. भगवान बताते हैं कि आप सब मेरे अंश हो. तो अगर हम अंश है तो हम पूरे कैसे हैं. रूपा जी उदाहरण तात्पर्य में कि कैसे जो हाथ है वो पूर्ण है किसके लिए, हाथ का काम करने के लिए. हाथ की पूर्णता सिर का काम करने के लिए नहीं है, पर हाथ का काम करने के लिए जो भी चाहिए वो सब हाथ में है. अगर वैज्ञानिक ने थोड़ा संशोधन किया था कि अगर हमें कुछ चीज पकड़नी है तो जो मानव का हाथ का डिजाइन है वैसा और कोई डिजाइन नहीं हो सकता है. अगर ये अंगूठा इधर मिले वो इधर आ रहा तो क्या है, पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है. तो बराबर ये अंगूठा इधर है और हम जब पकड़ने के बाद अगर ये अंगूठा इधर हो जाता था ना कोई पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता. तो जो पूरे हाथ का पोजिशन है बिल्कुल परफेक्ट है. बिल्कुल परिपूर्ण है. परिपूर्ण किसी है, हाथ के काम के लिए.
तो किसी और काम के लिए नहीं है। और दूसरी क्या बात है कि हाथ की पूरी पूर्णता तब रहेगी जब वो शरीर से संबंधित है। अगर शरीर से कट जाता है तो दिखने के लिए वो हाथ जैसे ही दिखेगा पर वह हाथ का काम नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह से हमारी परिपूर्णता किस लिए है कि हमारा जो भूमिका है वह है सेवा। तो सेवा के लिए हम परिपूर्ण हैं, भोग के लिए हम परिपूर्ण नहीं है। तो हाथ अगर मैं हाथ आग बोलता हूँ सिर का काम तो नहीं कर सकते तो हाथ उसके लिए परिपूर्ण नहीं है। तो हम सेवा के लिए परिपूर्ण हैं। और हमारी परिपूर्णता कब आती है जब हम भगवान से संबंधित होते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी अपने गोविंद भाषण बताते हैं कि भगवान की परिपूर्णता और जीवात्मा की परिवर्तन इनमें क्या संबंध है। देखिए कृष्णा इज इंडिपेंडेंटली कंप्लीट एंड जीवात्मा इज डिपेंडेंटली कंप्लीट। भगवान जो है उनकी परिपूर्णता उनकी स्वतंत्र परिपूर्णता है और हमारी जो परिपूर्णता है वो परतंत्र परिपूर्णता है। मतलब अगर भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, हमारे बिना भगवान पूर्ण है, पर अगर हम भगवान दूर जाते हैं तो हम परिपूर्ण नहीं रह सकते, हम अपूर्ण रहते हैं। तो ये जो हमारी पूर्णता है वह भगवान की सेवा के लिए है और जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तब हम परिपूर्णता महसूस करते हैं। अब ये परिपूर्णता का मतलब क्या है? पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण आनंद, पूर्णता जब महसूस करते हैं। जब भक्त को साधारण या भौतिक जगत में जब हम जीते हैं तो हमें सदैव कुछ अपूर्णता लगती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो अगले जो तात्पर्य अगला जो चौथा पैराग्राफ है तो प्रभु जी बोलते सबसे पहले बताते हैं कि हमारा मानव जो हम भी परिपूर्ण है पर ये कैसे परिपूर्णता है? ये निर्भर परिपूर्णता है, परतंत्र परिपूर्णता है। और फिर ये असली परिपूर्णता चाहिए तो दो प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं, एक है भौतिक स्तर पे और दूसरा है आध्यात्मिक स्तर पे। और अगर भौतिक स्तर पे प्रयास करते हैं परिपूर्ण होने का तो वो हमेशा असफल रहेगा। तो भौतिक स्तर पे पूर्ण होने का प्रयास करना मतलब क्या कि जब भौतिक जगत में हम जीते हैं छोटा बालक होता है, अरे मेरे पास खिलौना नहीं चाहिए, खिलौना नहीं मुझे चाहिए, खिलौना चाहिए। तो क्या होता है वो खिलौना न होने के कारण उसको लगता है मैं कुछ अपूर्ण हूँ और वो सोचता है खिलौना मिल जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और जब कि नौजवान लगता है तो सोचता है मुझे मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, फिर स्त्री चाहिए और फिर इस सबसे मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और वास्तव में माया हम सब पे प्रभाव कैसे करती है? हमें अपूर्णता का भाव लगा निकाम वासना क्या करते हैं कि पुरुष को लगता है कि मैं स्त्री के बिना अपूर्ण हूँ। लोग क्या करता है कि ये धन संपत्ति, ये बंगला, ये कार, इसके बिना मैं अपूर्ण हूँ। क्रोध मतलब मैं अगर चिल्लाऊंगा नहीं, हाथ पैर नहीं जाऊंगा, चलाऊंगा नहीं तो क्या मैं अपूर्ण हूँ। इसका जो ईर्ष्या है इसके पास इतना है मेरे पास नहीं इसलिए मैं अपूर्ण हूँ। तो सारे अर्थ कार्य कैसे करते हैं? हमें अपूर्णता का भाव लगता है। और भौतिक स्तर पे हमेशा लोग क्या कर रहे हैं? जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूर्णता अनुभव करने के लिए कर रहे हैं, पूर्णता अनुभव करने के लिए कि अभी मुझे पूर्ण नहीं लग रहा है, मैं और करूंगा तो पूर्ण हो जाऊंगा, और करूंगा तो पूर्ण हो जाऊंगा। तो इसलिए सोचते कि अभी मेरा इतना बड़ा बंगला है और बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा बंगला है और बड़ा बंगला चाहिए। तो पर ये भौतिक स्तर की पूर्णता है वह सबसे पहले प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है और दूसरा प्राप्त कर भी लिया तो भी वो अस्थाई है। अस्थाई है, अस्थाई है मतलब क्या? ऐसे कई साल पहले मैं भक्ति में आने से पहले तो मैं अखबार पढ़ रहा था तो एक भारतीय क्रिकेटर था उसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड किया था और जब उसने वो रिकॉर्ड बनाया था 15-20 साल पहले तो सारे विश्व बड़ा फेमस हो गया था। और तभी उसने इंटरव्यू तो अभी मेरा जीवन यशस्वी हो गया है, अभी मुझे लगता है कि मैंने मेरे जो करियर है, मेरा जो जीवन है उसका परिपूर्णता प्राप्त कर ली है। पर 3-4 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा क्रिकेटर था उसने इस भारतीय क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो वापस उसका इंटरव्यू आया। तो इस क्रिकेटर क्या बोला अभी ये बूढ़ा हो गया वापस क्रिकेट खेलने से पहले कायल हो गया। तभी उसने इंटरव्यू करके बोला क्या कि मुझे ऐसा मैं ऐसे हवा में उड़ रहा था और किसी ने आके मेरे पंछी काट मेरे पंख काट दिए है और नीचे गिर रहा हूँ असहाय भाव से ऐसा लग रहा है मुझे। तो क्या होता है भौतिक जगत में कोई बड़ी मेहनत करके कोई पूर्णता प्राप्ति कर लेता है तो वो स्थायी नहीं होते। तो मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तो मेरी इच्छा थी कि मैं हमेशा पहला आना चाहता था, और मैं पहला दूसरा आता था। तो जो अमेरिका जाने की एक परीक्षा थी तो उसमें संपूर्ण महाराष्ट्र में पहला आ गया, संपूर्ण महाराष्ट्र में पहला आ गया, हमारे कॉलेज में के इतिहास में सबसे पहला नंबर आया था। तो फिर सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। और फिर दो तीन महीने के बाद दूसरे विद्यार्थी जो था उसको एक बार कुछ ज्यादा मिल गया। तो फिर सभी मैं सोचने लग गया कि मैं सारी जिंदगी पर ये इच्छा कर रहा था कि मुझे पहला आना है, और ये इच्छा पूरी हो गई। पर क्या है भाई, मेहनत करके पूरी कर ली इच्छा, पर उसके बाद में क्या होता है, कोई दूसरा उससे ऊपर चला गया तो फिर क्या, अब वापस मेहनत कर, वापस पूरा करने का प्रयास करो इच्छा, वापस कोई और आएगा आगे चला जाएगा। तो ये जो है ये जिंदगी में चलते रहेगा, इसमें कोई संतुष्ट नहीं है। ऐसे ये कहते हैं कि रैट रेस मतलब क्या, चूहों का जो दौड़ होती है, तो ये बहुत ही जल्दी चूहों की दौड़ चलती है। और चूहों की दौड़ में समस्या क्या है कि इवन इफ यू विन द रैट रेस यू स्टिल रिमेन अ रैट। अगर आप चूहों की दौड़ जीत जाते हैं तो ये आप चूहे बने रहते हैं, तो दूसरा चूहा आगे मारना जीत जाएगा। तो भौतिक स्तर में कोई परिपूर्णता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, प्राप्त किया तो भी स्थायी नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर कार, बहुत अच्छा कार खरीद लेता है, अभी ऐसे कार है, एक एडवर्टाइजमेंट एक कार का देते हैं कि ये कार खरीदो और अपने पड़ोसी के आंखों में ईर्ष्या देखते हैं उसका आनंद भोगो। एंजॉय द एनवी इन योर नेबर्स आईज, आपके पड़ोसी के आंखों की ईर्ष्या से आप भोग करो। कितना जिसके सर का ये आनंद है कि दूसरों में ईर्ष्या प्राप्त करके आनंद प्राप्त करें, ईर्ष्या उत्पन्न करके आनंद प्राप्त करें। पर भले ही व्यक्ति ऐसे कार खरीद के लोन लेके कार खरीद लेता है, पर बाद में खरीदने के बाद क्या होगा, कुछ दिन के लिए रहेगा, पर बाद में कोई और पड़ोसी आ जाएगा और वो क्या करेगा, उससे और अच्छी कार लेगा, और फिर वो आपकी आंखों की ईर्ष्या का अपहरण करेगा। तो इस तरह से भौतिक स्तर पे अगर कोई परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है तो परिपूर्णता स्थायी नहीं है। तो फिर कार खरीदना बड़ा मुश्किल है, लोन लो पैसा कमाओ, बाद में खरीदने के बाद भी कोई और अच्छी कार आ जाएगी तो परिपूर्णता चली जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिक स्तर पे परिपूर्णता व्यर्थ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हमारी
बहुत सुंदर वाक्य है प्रभुपाद जी,
प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट होल। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सभी प्रकार की परिपूर्णता जो है वो क्यों आपको अनुभव होती है, क्योंकि ये जो तीसरा पैराग्राफ है उसका दूसरा वाक्य है कि मैंने क्या है इसका पूर्ण के जो आपका पेज के एंड में है 15 पेज में, पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। कि पूर्ण के अपूर्ण ज्ञान के कारण अपूर्णता का सारा अनुभव होता है। मतलब क्या है, थोड़ा शब्दों का खेल है, पर हम भौतिक स्तर में पूर्णता चाहते हैं, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर उसे अपूर्ण देते हैं। पर अगर हम समझ जाएंगे कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वह सर्वाकर्षक है, अगर केवल सर्वाकर्षक है वह मुझसे प्रेम करते हैं, तो अगर यह समझ लेंगे और हम उनके और आकर्षण हो जाएंगे तो फिर ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और कुछ चाहिए ही नहीं हमको। अगर कोई क्रिकेटर है, उसका फैन है, तो उसको अपने जो फेवरेट क्रिकेटर उसका एक ऑटोग्राफ मिल जाता है तो जिंदगी को याद रखता है, ऑटोग्राफ मिल गया। तो फिर एक क्षण के लिए वो उससे संग हुआ है, पर वो सोचा कि क्रिकेटर इतना बड़ा है, पर ये सारे क्रिकेटरों से, सारे फिल्म स्टारों से, सारे राजनीतिकों से सबसे बड़े जो सबसे आकर्षक व्यक्ति है भगवान, और वह स्वयं हमसे प्रेम करने के लिए तैयार है। जब हम ये समझते हैं भगवान के बारे पूर्ण ज्ञान मिलता है तो फिर हम भगवान की ओर आकर्षित जाते हैं, और जब भगवान की ओर आकर्षित जाते हैं तो भगवान की भक्ति में पूर्णता अनुभव होती है और कोई अपूर्ण इच्छा नहीं रहती। प्रभुपाद जी
जब अंतिम समय आया उनके लिए वृंदावन में, वो पूछा कि आपको कोई अंतिम इच्छा है? रूपा जी बोले कुछ इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं, क्यों? बोलते संतुष्ट। गुरु महाराज का उदाहरण आता है, स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। स्वामी ने कृतार्थ रूप में आपको कृतार्थ हूं कि आप मुझे प्राप्त हो गए और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी हम सबके जीवन में अपूर्णता, हम ब्रह्मचारी रहते हैं तो अपूर्णता तो सबको रहती ही है, क्योंकि उनका काम वासना क्रोध ये सब गया नहीं है। तो जितना हम भगवान से संबंध जोड़ लेंगे उतना ही अपूर्णता कम हो जाएगी। तो और भगवान को संबंध जोड़ने का खास करके जो समय होता है हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, हम ये देखिए आप देखेंगे कि अगर हम जो सुबह का कार्यक्रम होता है उसमें ध्यान पूर्वक हम मन लगाते हैं, भगवान से हमारे हृदय का संबंध जोड़ लेते हैं, तो फिर जो दिन भर काम क्रोध लोभ मोह ये सब है वो उतना परेशान नहीं करेंगे। और सुबह के कार्यक्रम में अगर मन नहीं लगता है तभी भगवान से संबंध नहीं जोड़ते हैं, तो क्या है, हम आध्यात्मिक भगवान से संबंध जोड़ लिया तो आध्यात्मिक स्तर पर परिपूर्णता अनुभव होगी, पर भगवान से संबंध नहीं जोड़ा है तो फिर आध्यात्मिक स्तर पर संतुष्टि नहीं है, तो फिर हम भौतिक स्तर पर संतुष्टि ढूंढने का प्रयास करेंगे और फिर वो काम क्रोध लोग बहुत परेशान कर देंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं कि जो सभी प्रकार की अपूर्णता अगर हम अनुभव हो रही है, ब्रह्मचारी जन्म लगता है कि ब्रह्मचारी जन्म अपूर्ण लग रहा है, तो पूर्णता प्राप्त करने के जरूरी नहीं है कि किसी को गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना है।
वास्तव में
अगर हम भगवान संबंध जोड़ लेते हैं और भगवान से संबंध हमारे हृदय में बहुत इंटेंस तीव्र हो जाता है तो फिर हम पूर्णता अनुभव करने लगेंगे और फिर उसके बाद में कोई चिंता नहीं रहेगी। प्रभुपाद जी अंत में आखिरी पैराग्राफ में बोलते हैं कि आपका जो कर्म है वह भी आप पूर्ण कैसे कर सकते हैं, तो अगर हमारा जीवन पूर्ण करना है तो ईशावास्य गंधर्व जीवन में चाहिए, मतलब हर सारे कर्म भगवान की सेवा के लिए करने चाहिए। तो इस तरह से तो आखिर पैराग्राफ में बता रहे प्रभुपाद जी ऐसे कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम परिपूर्णता अनुभव करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे तो परिपूर्णता कभी अनुभव नहीं हो, सेवा करेंगे भगवान की तो परिपूर्णता जरूर अनुभव हो जाएगी। तो फिर अभी इस श्लोक के बाद प्रभुपाद जी ईश्वर को चालू करते हैं, ईशावास से श्लोक, तो कोई सवाल है अभी इस श्लोक में? हाँ, भौतिक जगत को अस्थाई और अपूर्ण बताया जाता है, तो इसको पूर्ण कैसे कह सकते हैं? तो वास्तव में अच्छा सवाल है, भौतिक जगत जो पूर्ण है उसके उद्देश्य के लिए पूर्ण है। भौतिक जगत का उद्देश्य क्या है कि जीवात्मा के विचारधारा को सुधारना, उसके लिए पूर्ण है। यह बहुत नास्तिक और आस्तिकों में हमेशा यह विवाद चलता है। आस्तिक लोग कहते हैं क्या देखो भगवान ने कितना सारा दिया, भगवान ने बारिश दिया है, अन्न दिया है, हवा दिया है, आप कैसे कह सकते भगवान नहीं है, भगवान इतना सारा दिया है। और नास्तिक लोग कहते हैं क्या कहते हैं, अगर भगवान ने बारिश दी है तो कभी कभी ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ हो जाती है, कभी कभी बहुत कम बारिश होती है और फिर कभी सूखा पड़ जाता है, भगवान ने हवा दी है तो फिर कभी कभी तूफान आ जाता है, तो क्या है भगवान की योजना, कोई योजना नहीं है। तो दोनों इस तरह से वाद विवाद करते हैं, नास्तिक लोग कहते हैं आस्तिक लोग कहते भगवान ने इतना दिया है, इतना अच्छी तरह से योजना बनाई है, और नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान ने इतनी बुरी तरह से योजना बनाई, दुनिया की योजना इतनी बुरी है इसलिए भगवान है नहीं। तो इसीलिए कि दोनों का जो विवाद है वो एक स्तर पर चल रहा है और वो स्तर ही गलत है। वो स्तर क्या है, अच्छा और बुरा किस आधार पर हम जांच रहे हैं? अगर हम अच्छा और बुरा इस आधार पर जांचेंगे कि ये हमारे भौतिक सुख के लिए, भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए अच्छा है बुरा है, तो फिर आस्तिक लोग जीत नहीं सकते। वास्तव में इस भौतिक जगत की जो अच्छाई या बुराई है वो जांचना है तो भौतिक जगत का उद्देश्य क्या है वो समझना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है, ये भौतिक जगत हमारा घर नहीं है, ये भौतिक जगत एक जेल के समान है।
तो जेल में
हम देखते हैं क्या नियमितता होती है, व्यवस्थापन होता है, कैदियों को खाना मिल जाता है, सोने की जगह होती है, कपड़े मिल जाते हैं, रोटी कपड़ा वहां मिलता है, फिर कोई दवाई मिल जाएगी, पर उसके साथ साथ दुख भी रहेगा, बड़ी मेहनत है, को स्वतंत्रता नहीं है। तो अगर किसी भी सृष्टि का, अगर हमें सृष्टि अच्छी है बुरी है इसका अगर हमें जांच करनी है, तो सृष्टि का उद्देश्य क्या है वो सबसे पहले देखना चाहिए। अगर अभी मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल से कुछ मैं SMS टाइप भी कर सकता हूँ, पर अगर मैं मोबाइल से मेरा अगला किताब देखने का प्रयास करूंगा और फिर टाइपिंग करने जाऊंगा तो क्या होगा? क्या बकवास मोबाइल है ये, टाइपिंग करना कितना मुश्किल है ये, मैं किताब टाइप करने जा रहा हूँ, हो ही रहा है। जो मोबाइल की कंपनी एकदम बकवास थर्ड क्लास कंपनी, बुद्धि बुद्धू लोग है, पता नहीं तो कोई बुद्धिमान से बोलेगा अरे भाई मोबाइल का ये उद्देश्य नहीं है। मोबाइल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि आप फोन पे बात करो, और एक सेकेंडरी उद्देश्य है, द्वितीय उद्देश्य क्या है कि आप ये संदेश बड़ा वो टाइप कर सकते हो। किताब टाइप करना ये मोबाइल का उद्देश्य नहीं है। तो अगर मुझे मोबाइल की सृष्टि अच्छी है या बुरी है, डिजाइन अच्छा है बुरा है देखना है, तो सृष्टि के साथ साथ सृष्टि का उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से अगर हमें जानना है कि भौतिक जगत अच्छा है या बुरा है, तो ये इसका अच्छा है या बुरा है समझने के पहले उसका उद्देश्य समझना चाहिए। तो अगर हम सोचेंगे कि भौतिक जगत मेरे लिए अच्छा घर है, और फिर देखिए अच्छा है या बुरा है, लगेंगे अच्छा मुझे नहीं है, अच्छा नहीं है। पर ये भौतिक जगत का उद्देश्य क्या है? जेल के समान है। जेल के समान है मतलब यहाँ पे हमारे जो मूलभूत जरूरतें हैं उनकी पूरी हो जाती है, पर यहाँ पे सुख नहीं है। जेल में अगर सुख रहेगा तो क्या होगा? जेल से बाहर ही नहीं आएंगे लोग, जेल से बाहर ही नहीं आएंगे लोग।
तो इसलिए जो
बैंगलोर मंदिर है वो कुछ फुटबॉल लाइक कर रहे थे, तो उन्होंने बैंगलोर के जेल में जाकर फुटबॉल चालू कर दिया। तो वहां पे वो 3-4 आइटम जेल में दे रहे थे, तो कहते ही जब जेल खत्म खत्म नहीं होता तो जाने को तैयार नहीं थे, और फिर गए भी बाहर तो क्या होता था, चोरी करते थे और चोरी की जगह पे बैठ जाते थे। आखिर हमको आप अरेस्ट कर लो, जेल में लेके जाओ, कि जेल में अच्छा खाना मिल रहा है बाहर से ज्यादा। तो फिर वो सरकार ने बोला आप जेल में खाना दे रहे हैं, इतना अच्छा खाना मत दो, थोड़ा अच्छा आइटम, थोड़ा सा आइटम दे दो, क्योंकि आप अच्छा खाना जेल में देंगे तो जेल से बाहर जाने का इच्छा ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से ये भौतिक जगत का जेल का उद्देश्य वहां पे हमेशा रहना नहीं है। वहां पे जो व्यक्ति की विचारधारा को परिवर्तित करके उसके बर्ताव को परिवर्तित करके उसको बाहर भेजना है, और उसके लिए जेल अच्छा है। ठीक उसी तरह से अगर ये भौतिक जगत में बहुत सारा सुख मिल जाएगा, ये बात मुझे यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? इसलिए भौतिक जगत पूर्ण कैसे है, हाँ ये अस्थायी है, ये नश्वर है, ये दुखमय है, पर ये पूर्ण है उसके उद्देश्य के लिए। भौतिक जगत का उद्देश्य क्या है कि भौतिक जगत से हमें बाहर निकाल के भगवत धाम में जाना। इस क्लियर? क्लियर? कोई और सवाल है? यस जो कुछ लोग ब्रह्म को मानते हैं पर शास्त्र को नहीं मानते हैं, तो वो सही है गलत है? ब्रह्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके दो विभाग हैं, ब्रह्मवादी और मायावादी। तो ब्रह्मवादी लोग कौन है? वो ब्रह्मन में की ओर आकर्षित होते हैं, ब्रह्मन में जाके लीन हो जाते हैं, तो ये भाव अपराधास्पद नहीं है। यह लोग शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्र में उनको ब्रह्मन का वर्णन मिलेगा, उसकी ओर वो आकर्षित हो जाते हैं और वहां पर आने लगते हैं। तो ऐसे लोगों का वर्णन भगवान 12वें अध्याय में करते हैं,
5वें श्लोक में बोलते हैं
क्लेशो धिक्तरस्तेषाम अव्यक्ता तत्व चेतसाम। ऐसे लोग अगर प्रगति कर रहे थे बड़ा क्लेश होता है, आसान नहीं है पर वो प्रगति कर सकते हैं,
और भगवान कहते हैं
अंत में वो मुझे ब्रह्म ज्योति के रूप में मिल जाएंगे।
पर
तो दूसरा है मायावादी लोग। मायावादी लोग क्या कहते हैं? उन्होंने केवल ब्रह्मन को प्राप्त करना चाहते हैं, पर वह कहते हैं कि ब्रह्मन ही सर्वश्रेष्ठ है और भगवान ये एक ब्रह्मन का एक क्षणिक रूप है। मतलब जब ब्रह्मन अपने आप को माया से ढक लेता है तो भगवान के रूप में आ जाता है। मतलब वो कह इसीलिए उनको मायावादी कहते हैं। मतलब वो कह रहे कि भगवान का रखे हुए भौतिक जगत माया है पर भगवान का रूप भी माया है। तो ये जो मायावाद है यह शास्त्र के विरुद्ध में है और यह अपराध है।
तो इसलिए मायावादी
कृष्ण अपराधी चेतन महापुर, और
मायावादी शास्त्रों का बहुत उल्टा पुल्टा अर्थ निकालते हैं और ऐसा गलत अर्थ करते हैं जिससे कि शास्त्र का अंतिम उद्देश्य है वो गुमराह हो जाते हैं, न कि वो गुमराह है तो दूसरे गुमराह करते हैं, इसलिए वो बुरा है। पर अगर ब्रह्मा ज्योति में जाना जाता है तो वो अपराध नहीं है, जा सकते हैं वहां पर। जो मायावादी है वो न केवल ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं पर ब्रह्म ज्योति को भगवान से ऊंचा मानते हैं और भगवान को ब्रह्मन का एक क्षणिक रूप, भौतिक रूप मानते हैं। तो ऐसे लोगों का भगवान खंडन करते हैं नौवे अध्याय के 11-12 श्लोक में, अवजानंति मां मूढ़ा मानुषिं तन्माश्रितम्।
तो
ब्रह्मवाद और मायावाद दोनों का वर्णन है और ब्रह्मवाद को मुश्किल बताया गया है, ब्रह्मवाद का खंडन नहीं किया गया है, मायावाद को यह बताया गया है कि मूढ़ा है।
मूर्ख जो कहते हैं कि मैं माना, मैं भौतिक शरीर में आया हूँ,
और उनका क्या, उनकी क्या होती है, मोहाशा मोह कर्माणो मोह ज्ञानानां चेतसः राक्षसी मास्मिन चैव प्रकृति मोहिनीशतः। कि उनका जो भी आशा है, जो भी कर्म है, जो भी ज्ञान है, वो सब मोह मोह पर से व्यर्थ हो जाएगा और वो राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाएगी। तो आसुरी प्रवृत्ति मतलब रजोगुण, राक्षसी प्रवृत्ति मतलब तमोगुण, मतलब वो रजो तमो में चले जाएंगे, इसमें तो फर्क है। निर्विशेषवाद क्या है? वास्तव में निर्विशेषवाद ये ब्रह्मवाद या मायावाद दोनों भी हो सकते हैं,
खास करके निर्विशेषवाद
को, मायावाद को निर्विशेषवाद बताया गया है। पर कहते हैं थोड़ा जटिल है
पर
शायद आप समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं एक गुलाब का चित्र बनाता हूँ तो पहले गुलाब का चित्र बनाता हूँ तो उसमें लाल रंग डालता हूँ, मतलब गुलाब अलग है और उसके बाद में लाल रंग उसके ऊपर डाला हुआ है। पर एक स्वाभाविक गुलाब जब आता है तो ऐसे नहीं गुलाब एक जगह पे लाल रंग दूसरी जगह पे, वो साथ ही आता है। तो जो नैसर्गिक गुलाब है उसका लाल रंग उससे अविभाज्य है, उससे अविभाज्य, क्योंकि वो उसका अंतरंग उसका स्वरूप में ही वो इनकॉर्पोरेट, उसके अंदर ही है वो उसका लाल रंग। उस तरह से माधवाचार्य जी बताते कि विशेष, हम विशेष शब्द अद्भुत या आकर्षक ऐसे बोलते थे, पर विशेष का वो अर्थ होता है, विशेष मतलब जो अंतरंग गुण है, अंतरंग गुण को विशेष कहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो उनका अंतरंग गुण है। मायावादी लोग क्या कहते हैं कि एक ब्रह्मन है और ब्रह्मन में आपने रूप डाल दिया तो फिर भगवान बन गए, पर वास्तव में वैसे नहीं है, ब्रह्मन का ही स्वयं एक रूप है, मतलब वास्तव में रूप है और रूप से ब्रह्म ज्योति बाहर निकल रही है। जैसे आप इस तरह देखा होगा भगवदगीता में, भागवत में कृष्ण है और कृष्ण से ज्योति निकल रही है, तो ब्रह्मन पे ऐसे कृत्रिम गुलाब बना के उस पे रंग डालना ये मायावाद निर्विशेषवाद हो गया। मतलब परम सत्य को कोई विशेष नहीं है, तो कोई गुण नहीं है, पर उसके ऊपर हम गुण डाल रहे हैं। पर नैसर्गिक गुलाब में पहले से ही उसका रंग और रूप है, वैसे ही भगवान का पहले से ही शाश्वत काल से ही एक रूप है, एक वर्णन है और उनकी नाम रूप गुण लीला है। तो निर्विशेषवादी मतलब क्या कहते हैं कि भगवान जो परम सत्य है उनका कोई विशेष नहीं है, उनका रूप नहीं है, उनके गुण नहीं है, उनके लीला नहीं है। तो निर्विशेषवाद का खंडन हम विश्व से कैसे हुआ है ये श्लोकों की हम चर्चा करेंगे वैसे होगा।
तो
निर्विशेषवाद खास करके मायावाद का उल्लेख कर निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यस अगर ब्रह्म ज्योति ब्रह्मन साक्षात्कार भी भक्ति के बिना नहीं हो सकता है तो फिर पतन क्यों होता है? तो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर अपने भगवदगीता तात्पर्य में इसका बड़ा विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति, मतलब ऐसी भक्ति जो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाती है उसको केवला भक्ति कहते हैं, और उसके विपरीत है योग मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र भक्ति। तो योग मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र भक्ति में क्या होता है कि वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है
पर उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम नहीं है, उसका उद्देश्य है ब्रह्मन, अगर ज्ञान विशेष भक्ति है तो उसका उद्देश्य है ब्रह्म ज्योति में नहीं मिलना। तो इसीलिए अगर आप ध्यान को देखें तो 14 अध्याय श्लोक है, 26 श्लोक प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते हैं, मांस योग विचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान संति चेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये श्लोक हम बहुत बार सुनते हैं, पर इस श्लोक में बड़ा विलक्षण चीज भगवान बता रहे हैं कि जो आप मेरी भक्ति करेगा वो ब्रह्मन को प्राप्त करेगा, और कैसी भक्ति करेगा, और व्यभिचारी भक्ति करेगा तो ब्रह्मन को प्राप्त करेगा। तो बोले भक्ति करके ब्रह्मन को प्राप्त करेगा, भक्ति करके भगवान को भी प्राप्त करेगा, क्योंकि वो उसकी इच्छा है। अगर उसकी इच्छा है कि मुझे ब्रह्मन को ही प्राप्त करना है, तो फिर वो भक्ति, जो ज्ञानी लोग है वो भक्ति को एक सीढ़ी के समान मानते हैं, सीढ़ी पर चढ़ना है, सीढ़ी को त्याग देना है। तो ये सत्य है कि भगवान स्पष्ट में बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग ब्रह्मन का साक्षात्कार या योग मार्ग भगवान का साक्षात्कार, भक्ति के बिना यश नहीं प्राप्त होगा, तो भक्ति जरूर चाहिए। तो पर वो जो भक्ति है उनकी साधना में प्रधान अंग नहीं है, उनका उद्देश्य जो है वो द्वितीय है, उनका उद्देश्य भगवान नहीं है, उनका उद्देश्य ब्रह्मन है। तो भक्ति ही एक कल्पतरु के समान है, जब भगवान कल्पतरु है तो भक्ति भी कल्पतरु है, कल्पतरु मतलब जो हमारी इच्छाएं पूर्ति करते। तो अगर हम भक्ति देते हुए जाते हैं कहते हैं मुझे ब्रह्मन साक्षात्कार दिए, तो भक्ति देते तो कहां प्राप्त करूं। तो इस तरह तो वास्तव में वो माया वाले लोग कहते हैं, जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम भक्ति करेंगे और फिर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, फिर मुक्ति त्याग देंगे, क्योंकि भगवान और भक्त एक हो जाएंगे। इसीलिए इसके बाद तुरंत अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठितम्, वास्तव में ब्रह्मन क्या है, मेरे मुझ पर ही आधारित है। और फिर बाद में 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं 55वें श्लोक में, 54वें श्लोक में बोलते हैं कि वास्तव में असली भक्ति कब शुरू होती है, जब आप ब्रह्मन साक्षात्कार पूरा हो जाता है तब असली भक्ति शुरू होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परां, कि जब आप ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लोगे तब वास्तव में भक्ति शुरू होगी। ये श्लोक माया वाले को इतना परेशान करता है, श्लोक तो क्या है, वो क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पे हैं, ब्रह्मन यहाँ पे है, तो अभी ब्रह्मन पे जाना है तो कैसे जाएंगे। जैसे एक मायावादी संस्था है, वो कहते हैं कि आपका इष्ट देव चुन लो और इष्ट देव पे आप चिंतन करो, आप उसका विग्रह भी बना लो, उसे चिंतन करो, ध्यान में चले जाओ। और आपका ध्यान का यश कब होगा, जब आपके ध्यान की शक्ति से वो जो विग्रह है टुकड़े 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 होकर गिर जाएगा, मतलब आप रूप के हुए निराकार के चले गए। सूरी भाव है, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं विग्रह की, क्या सोचते हैं कि विग्रह को चूर 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 कर देना है और उसके परे जाना है। तो कई बार तो वो ध्यान से ऐसे हवा के लिए पता नहीं, तो लोग क्या करते हैं ध्यान में चले जाते हैं और ध्यान में जाके खुद ही तोड़ देते हैं विग्रह, और बोलते हैं मौलिक प्राप्त करें, बड़ा दुर्भाग्य है। तो उनका क्या विचार होता है कि भक्ति तब तक करो जब तक मुक्ति नहीं मिल जाए, मुक्ति मिल गई तो मुक्ति करने की जरूरत नहीं है। पर भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जब आप ब्रह्मान स्तर पे आ जाए तो क्या होगा, मद भक्ति लभते परां, तभी आपको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। मतलब कहते हैं कि ये भौतिक स्तर है, ये ब्रह्मन स्तर है। मायावादी लोग सोचते हैं कि यहां से यहां तक आने के लिए हमको भक्ति करनी है, भौतिक स्तर से भगवान के स्तर पर, ब्रह्मन के स्तर पर। पर भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मन स्तर के आने पर असली भक्ति चालू होगी, मद भक्ति लभते परां, मतलब भक्ति ये शाश्वत है। पर अगर कोई चाहता है कि भक्ति के द्वारा मुझे मुक्ति चाहिए, तो भक्ति देवी कल पत्र उसको दे देगी। इसीलिए चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि भगवान जी बताते हैं दो बार, मन मनाभव मद भक्त, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, ये दो मन मनाभव मद भक्तों के बता रहे हैं कि मन मना, ये तो ज्ञानी लोग भी करते हैं, ज्ञानी लोग भी भगवान में चिंतन करते हैं। पर भगवान बता रहे हैं कैसे चिंतन करो, आप मेरा भक्त बन के चिंतन करो, आप ज्ञानी के रूप में चिंतन मत करो, योग के रूप में चिंतन मत करो, मुझे मन मना भाव मत करो, मेरा भक्त बन के मुझ पर चिंतन करो। फिर उससे क्या होगा, आप मेरे धाम में लौटे।
स्पष्ट है
ये भौतिक सृष्टि अगर पूर्ण है तो फिर अपूर्णता का प्रश्न कहाँ आता है? देखो भौतिक सृष्टि पूर्ण है पर हमें अपूर्णता का अनुभव हो रहा है क्योंकि हम अभी तक हमारी भूमिका अस्तित्व नहीं हुआ है। जैसे जो शास्त्र जो राष्ट्र है वो सब नागरिकों को जो भी सुविधा है वो दे रहा है पर जो कैदी है उसको पूर्णता अनुभव नहीं होगी क्योंकि वो अपनी अपनी जो भूमिका है अपना जो कर्तव्य पूर्णता से नहीं कर रहा है। अगर वो अपना कर्तव्य पूर्णता से करने लगेगा तो फिर उसको देखा कितना सरकार से काम कर रही है। तो अभी हमको अपूर्णता क्यों अनुभव होती है? क्योंकि हम हमारी जो भूमिका है अच्छी तरह से नहीं मारे हैं। अगर हम सेवा में लग जाते हैं ध्यान पूर्वक हृदय पूर्वक सेवा करते हैं तो हम भौतिक जगत से भी संतुष्टि अनुभव कर सकते हैं, पूर्णता अनुभव कर सकते हैं। हाँ अगर कोई ब्रह्मज्योति को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में परमात्मा क्यों कहा जाएगा? वो साधारण तरह से है कि ये हम योगा लेटर जो है के बारे में वास्तव में मैं कई प्रश्न ले रहा हूँ। ये आगे जब हम विस्तार तात्पर्य में चर्चा करें तभी आने वाले थे और अगर अभी लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा और भले ही हम थोड़ा स्लो जाएगी अभी बाद में हम तात्पर्य लेंगे तो पास हो जाएगी। तो कहते हैं कि व्यक्ति भौतिक जगत से ब्राह्मण तक जाता है दिखाई दे तो ब्राह्मण से जाने के बाद वो वापस पुनः यहाँ पे आ जाएगा। आर्य कृष्ण परम पदंगता पतंती अधो अनादिश्वरांग ब्राह्मण से जाएगी पुनः वापस यहाँ जाएगी। दूसरा भाग है कि वो यहाँ से परमात्मा के साथ सत्कर्म प्राप्त करते हैं। तो ये कैसे होगा? ये ज्ञान मार्ग से होगा, योग मार्ग से होगा। ये योग मार्ग मतलब योग मिश्र भक्ति चलिए सिर्फ ज्ञान और योग ही चलेगा, ज्ञान मिश्र भक्ति है योग मिश्र भक्ति। तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और फिर सारा भक्ति जो कहते हैं यहां से भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भक्ति के द्वारा। तो अभी कोई व्यक्ति ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है तो साधारणतया यहाँ से वो ऊपर आ जाता है, वो पुनः भौतिक जगत में आ जाएगा और फिर यहाँ पे सत्पूर्ण में कार्य करेगा, भक्तों का संग मिलेगा तो पुनः भगवद्धाम जा सकता है। एक संभावना है उसके लिए क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जब भगवद्धाम लौट के जा रहे हैं बृहद भागवतम में उसका वर्णन आता है कि शुद्ध भक्तों को प्रचार करने की इतनी इच्छा है कि भौतिक जगत में प्रचार करते हैं पर जब ब्रह्मज्योति से जा रहे हैं तो ब्रह्मज्योति में प्रचार करते हैं और जब ब्रह्मज्योति में जीवात्मा रखे हुए उनको भी साथ में लेकर भगवद्धाम ले जाते हैं। तो पर वो बहुत दुर्लभ ऐसे होना, साधारणतः ब्रह्मज्योति से वो लोग पुनः भौतिक जगत में आ जाते हैं। पर जो परमात्मा है परमात्मा साक्षात प्राप्त करते हैं वो दो संभावना है, वो इधर जा सकते हैं या इधर आ सकते हैं। जब परमात्मा साक्षात हो जाता है तभी उसके बाद उनका भाव क्या है? यदि वे सोचते हैं कि ये परमात्मा मैं ही हूं तो फिर क्या होता है? और ब्रह्मांड से जाते हैं और वो सोचते हैं कि अरे परमात्मा की मुझे सेवा करनी है तो फिर उनको भगवत धाम में वैकुंठ में दास साधारणतः शांत रस में मुक्ति मिलती है क्योंकि ध्यानावस्थित तत्वते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। श्रीमद् भागवतम के अंत में जब शुभदेव गोस्वामी भगवान का गुणगान करे तो श्लोक आता है कि ये भगवान को ध्यान में चिंतन करते हैं। योगी लोग हैं उनको निष्क्रिय होकर चिंतन या आनंद मिलता है, क्रियाशील सेवा में उनकी रुचि नहीं है इसीलिए वो शांत रस से चले जाते साधारण। पर अगर वे सोचते हैं कि मुझे ब्रह्मांड में लीन होना, आप सबको पता होगा प्रभुपाद जी वो कथोपनिषद श्लोक बोलते हैं कैसे एक पेड़ में दो वृक्ष हैं, दो पंछी हैं। आप जानते हो श्लोक को कैसे दो पंछी हैं इस श्लोक में, दाव सुपर्णा। तो वो कहता है कि एक एक पंछी फल खा रहा है, कभी अच्छे फल मिलते तो सुखी हो जाता है, बुरे फल मिलते हैं तो दुखी हो जाता है। पर जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमाना इति श्लोकः। अगर वो दूसरे पंछी की ओर देख लेता है और प्रसन्न मुड़ता है, उसकी महिमा को समझता है, तो फिर सारे दुख दूर हो जाता है। मतलब क्या कि माया की ओर मुंह छोड़ के वो भगवान की ओर मुख कर लेता है और भगवान की सेवा में लग जाता है तो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। पर इसके विपरीत मायावादी क्या बोलते हैं, पंछी को देख रहा है फिर दूसरे पंछी को देखता है और दोनों एक पंछी एक दूसरे के आते एक हो जाते हैं। वास्तव में एक हो जाते ऐसे वर्णन है ही नहीं वहां पर उपनिषदों में, पर यह उनकी कल्पना है। तो वो दूसरे पंछी को देखना मतलब क्या, परमात्मा का साक्षात्कार करना। और उसके बाद में अगर सोचते हैं कि मुझे एक होना है उससे, तो फिर वो ब्रह्म में चल जाएगा। तो साधारणतः ब्रह्मन से परमात्मा की ओर जाना, ब्रह्मन से भगवान को जाना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा के स्तर से ब्रह्मन में आ सकते हैं, भगवान को जा सकते हैं, पर भगवान की प्राप्ति जाते तो तत्कत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वहां पर चले जाएगा तो पुनः कोई पतन नहीं है। हाँ सवाल है, जो ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य मत चेतन चरितामृत में जब 19वां अध्याय मध्य लीला का सनातन गोस्वामी की शिक्षा है, वो जब बड़ा विस्तार शिक्षा है वहां पे चेतन महापुरुष थे, तो ये दो प्रकार साहित्य बोलते हैं। एक है कि जो ब्रह्मन में लीन होना, और दूसरा है कि भगवान के शरीर में लीन होना। और चेतन महापुरुष बताते हैं कि ये भगवान के शरीर में लीन होना ये अघृणास्पद है, इट इज मोर अबॉमिनेबल, क्योंकि वो क्या है डायरेक्टली भगवान की ईर्ष्या है, मुझे भगवान बनना है, डायरेक्टली भगवान में जाना है। तो वास्तव में चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि दोनों का पूर्वाचार्य चक्रवर्ती पाद पूर्वाचार्य बताते हैं कि दोनों अस्थाई हैं और दोनों से वही होगा विचारी वापस। पर क्योंकि ब्रह्मन में लीन होना ये क्या है कि भगवान के सर्वव्यापी ऐश्वर्य को प्राप्त करना है ये उद्देश्य, पर भगवान के शरीर में लीन होना वह भगवान के सौंदर्य को प्राप्त करने की इच्छा है, तो इसलिए वो और गुणास्पद है। पर दोनों से क्या होगा पता नहीं हो जाएगा। तो हाँ वो मैं बोलने वाला था कहते हैं कि शिशुपाल भगवान मिलने होते हैं तो वो सिर्फ एक दिखावा है, वास्तव में ऊपर वो परमानेंट लीन नहीं, वो जो शाश्वत लीन होना नहीं है। चैतन्य चरितामृत में जो आदि लीला में वर्णन आता है, आदि लीला के पहले चैप्टर से बहुत तो ज्ञान से भरे हुए हो चैप्टर, तो उसका छठा अध्याय अद्भुताचार्य की महिमा वहां पर बताते हैं कि जब शिशुपाल जो हर युग में जब शिशु भगवान तो संभवामी युग में आते रहते हैं, तो हर युग में रावण होता, जब रामचंद्र आते हैं तो रावण होता है, तो हर बार जब रावण आता है वो जय विजय का प्रतीत रूप नहीं है। जो अभी पिछली बार जब लीला हुई तब जय विजय का प्रतीत रूप थे, जय विजय का पतन हो गया तो वो रावण के रूप में आ गए। तो फिर उस समय वो सिर्फ दिखाने के लिए कैसे जो भगवान से भगवान के द्वारा से अवध होता है तो उसकी गति साधारण नहीं होती है, वह दिखाने के लिए दिखा रहे कि वो उनके शरीर में चले गए, वास्तव में वो जय विजय के रूप में पुनः प्राप्त हो गए। पर वो बताते हैं वहां पे जी गोस्वामी बताते हैं भगवत कविधर्म में कि दूसरे युगों में जो शिशुपाल दंतवक्र होते हैं या रावण कुंभकर्ण होते हैं वे वास्तव में वे जय विजय नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है, क्योंकि जब जी गोस्वामी बहुत सुंदर बताते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने नरसिंहदेव को देखा तो समझे नहीं कि नरसिंहदेव भगवान है, दूसरे से रावण ने और सब देखा कि ये कौन है ये मुझ पर आक्रमण करने आ गया। पर उस तरह से जब रावण ने रामचंद्र को देखा तो समझे नहीं कि ये भगवान है, पर जब शिशुपाल ने कृष्ण को देखा तो अनेक ऋषि मुनि से खास कर नारद ऋषि से नारद मुनि से उन्हें सुना था कि ये भगवान है, और जब वो चक्र आ रहा था उनकी और समझे कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तभी उन्होंने भगवान का स्मरण किया ये जानते हुए कि ये भगवान है, इसीलिए उनकी मुक्ति।
तो उसके पहले जब राम, क्योंकि ये सवाल उठता है, हम कहते हैं कि जब भगवान किसी का वध करते हैं तो उसको मुक्ति मिल जाती है, तो अगर पहले राम ने वध किया था रावण का, तो रावण मुक्ति क्यों नहीं?
तो
क्या है कि चेतना भी उचित चाहिए, तो क्योंकि कृष्ण को देखकर वो जानते थे कि कृष्ण भगवान है, फिर भी ईर्ष्या कर देते, पर क्योंकि अंत में उनको समझ आया कि कृष्ण भगवान ही है और कृष्ण को भगवान के रूप में विचार कर रहे थे और उस समय उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए भगवत धाम लौटे। तो मैं कह रहा हूं कि अभी मैं जो बता रहा हूं ये इस युग की बात नहीं है, ये उस युग की है जब शिशुपाल अंतर्वक ये जय विजय नहीं थे, उस संग होता हूं। क्या बाद में चर्चा कर सकते हैं? तो क्या होगा, आज तक वास्तव में हमारे कितने 3 श्लोक होना चाहिए थे, अभी तक सिर्फ 1 श्लोक हुआ है, तो हम दूसरे श्लोक पे जाएंगे लेटर ऑन। हाँ, बाद में समय रहेगा, हम सवाल जब ये दूसरा सवाल भी तो हम कर सकते हैं। तो वास्तव में अभी तक हमने सिर्फ 1 पर, दूसरा श्लोक जो है उसका तात्पर्य बड़ा लंबा है, पर तात्पर्य का जो सार है हम श्लोक पर डिसाइड करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यच्चिच्च जगत्याम् जगत् तेन च तेन जीवा मां वृद्धा कस्य सृष्टनम्। ये सारा जगत जो है ईशावास्यमिदं सर्वं, ये किसका है? ईश्वर का है, और उन्होंने जो आपको दिया है वही लो, यच्चिच्च तेन च तेन भुंजीता, उतना ही आप भोग करो, मां वृद्धा दूसरा कुछ स्वीकार मत करो, कष्ट सूत्र हम जानते हुए कि किसका है। तो वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही श्लोक 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के पहले अध्याय में आता है, वहां पे स्वयंभू मनु यज्ञ को प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ उनके पुत्र यज्ञ विष्णु के अवतार है और उनके पुत्र के रूप में आए हैं, और तभी बिल्कुल यही श्लोक आता है, सिर्फ एक शब्द अलग है, आत्मावाच्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदर्कस्य स्वधनम्। ईशावास्य के जगह आत्मावास्य है, वहां पे उतना ही कर रहे। तो वहां बद्रे विद्यावशी जी बताते हैं कि सारा ईशोपनिषद जो है वास्तव में ये स्वयंभू मनु ने अपने साक्षात्कार जो भगवान यज्ञ उनको आए थे, तो आखिर स्तर में वर्णन आता है कि स्वयंभू ध्यान कर उन्होंने अपना सारा कर्तव्य पूरा करने के बाद वो उन्होंने पैदा के लिए मान को स्वीकार कर लिया, धन्यवाद स्वीकार कर लिया, और ध्यान में लगे हुए थे, और ध्यान में जब लगे हुए थे तो कुछ राक्षस आ गए, राक्षस उन पे आक्रमण करेंगे, अच्छा टकटा व्यक्ति उसको खा लेंगे, और फिर ध्यान में थे राक्षस आ गए, जब तो भगवान ने देखा कि राक्षस आ गए हैं, तो उन्हें भगवान ने आक्रमण करके और राक्षसों का वध कर दिया। ये भगवान कौन थे? ये यज्ञ मूर्ति थे, यज्ञ के रूप में आए थे, और जब स्वयंभू ने सब राक्षस को चीख वगैरह सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि भगवान ने मेरा मुझे बचा लिया है, तो फिर उन्होंने ये प्रार्थना अर्पण की। तो ईशोपनिषद क्या है? ये स्वयंभू मनु ने भगवान के जो गुणगान किया है वह वर्णन है, इसीलिए इसका अंत क्या आता है, अंत में हम श्लोक देखेंगे कि स्वयंभू मनु कह रहे अभी भले ही ये शरीर जो है मैं चाहने दो, मुझे शरीर गिर जाने दो, और वायु अनिलम भस्मांत विदम शरीरम, ये शरीर भस्म हो जाए तो पर मुझे आपका स्मरण हो और उससे मैं भगवत धाम लौट जाऊं, तो ये भाव है। तो ये शुरुआत कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ईशावास सारा जगत भगवान का है, तो इस बात पर यह बड़ा विस्तारित है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे वैदिक ज्ञान की महिमा क्या है, तो वो बेसिकली जो हम पहले चर्चा की पहले कल के प्रवचन में वही है। तो कल मैं आपको बता रहा था कि वेदों के 4 अंग हैं, क्या क्या अंग है वेदों के? ब्रह्मन अरण्यक संहिता, ब्रह्मन अरण्यक उपनिषद। तो जो ईशोपनिषद है ये यजुर्वेद का एक अंग है, एक यजुर्वेद का अंग है वो, तो और फिर ऐसी यजुर्वेद के अंत में आता है 40वां अध्याय यजुर्वेद का। उसके बाद में प्रभुपाद जी बताते हैं सबसे पहले कि भगवान सभी चीजों के मालिक कैसे हैं, तो यहां बताया जा रहा है कि भगवान सब चीजों के मालिक हैं। लोग कहां है भगवान? अभी भारतीय संस्कृति में तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ भगवान ही मारेगा नसीब होते, पर कई नास्तिक संस्कृति है उसमें लोग समझते ही नहीं, सब कुछ भगवान का, सब कुछ यहीं पे है, हमारा ही है। जैसे लोग जब जो एंटार्क्टिका नाम का एक खंड है वहां पे अलग अलग दे जाते हैं, वहां पे अपना झंडा लगा दिया, एंटार्क्टिका हमारा है, या फिर भारत भी वहां पे गया, भारत ने अपना झंडा लगा लिया वहां, और एंटार्क्टिका ये भाग हमारा है। या फिर तथाकथित जो लोग चंद्र में चले गए, चंद्र में गए तो अमेरिका के लोगों ने क्या कहा, सबसे पहले अपना झंडा लगा लिया अमेरिका का, मतलब क्या ये हमारा है, और किस बजे से किस आधार पे हमारा है, हम यहाँ पे सबसे पहले आए, पर वास्तव में क्या हमने इसका निर्माण किया है, नहीं। अगर हम बाहर जाते हैं कहीं और हमको कुछ एक वैलेट एक पर्स मिल जाता है जहाँ पे कुछ हजार रुपए हैं, तो दूसरा पर्स को उठा के पहले हम उठा लेते हैं, ये मेरा है, क्यों, क्योंकि मैंने प्राप्त कर लिया, ये मूर्खता है। तो वास्तव में ये भौतिक जगत हमसे बहुत पहले से अस्तित्व में है, और क्योंकि ये भगवान ने बनाया है इसलिए भगवान ही जानते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये भगवान की संपत्ति क्यों है, क्योंकि भौतिक जगत भौतिक तत्वों से बना है, भूमि रापो नलो वायु, और ये भगवान की शक्तियां हैं, क्योंकि पृथ्वी वायु अग्नि ये सब भगवान की शक्तियां हैं, इसीलिए ये सारा भौतिक जगत भगवान ने ही बनाया है। और प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं इसके लिए, अगर कोई कारपेंटर है, अगर अभी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ रिनोवेशन करते हैं, तो जो कारपेंटर आता है उसको हम बोलते हैं कि आपको शोकेस बनाना है, तो उसको हम लकड़ी देते हैं, उसको हम जो अगर तू है जिससे कि बनाना है उसको व्हाट इज द कपबोर्ड, अलमारी, तो अलमारी बनानी है तो वो बनाने के लिए हम उसको सारे जो वस्तुएं देते हैं सामग्री देते हैं, और जो अलमारी बनाता है वो बोलता है कि अलमारी मेरी है, क्यों मैंने बनाया, हम बोलेंगे मूर्ख है, तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको एक तनख्वाह मिलेगी, पर ये अलमारी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि इसकी सामग्री है ये हमने आपको दी। तो ठीक उसी तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे भौतिक जगत में हम जो भी बनाने वाले हैं, जो भी हम बनाएंगे उसकी सामग्री कहाँ से आती है, सामग्री भगवान से ही आती है। तो इसीलिए जो भी हम बनाते हैं वो वास्तव में भगवान का ही है, हमारा नहीं है। एक बार एक नास्तिक बोला, भगवान तुम जो भी कर सकते हो मैं खुद कर सकता हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो भगवान बोले ठीक है, क्या तुम पानी बना सकते हो, हाँ क्यों नहीं, ठीक है बनाओ। बोला तो बोला अपने सारे लैब में चला गया, आपको क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो वायु लेके बनाए, भगवान बोले कि नहीं तो अपना ऑक्सीजन बनाओ तो अपना हाइड्रोजन बनाओ और फिर पानी बनाओ। जो भी है कि नास्तिक लोग जो भी बनाते हैं वह सब कैसे करते हैं, वो सामग्री कौन देता है, भगवान ही देते हैं। तो एक बार एक साधु थे, बड़े भूखे थे, तो एक घर में उन्होंने आवाज दी, तो वहां पे जो उसका मालिक था वो नास्तिक था, लेकिन मैं बड़ा भूखा हूँ तो क्या लोग खिलाता हूँ, बोले तो उसने उसको खिला दिया, और फिर उसने देखा कि ये पहले तो उसने खिला दिया था, तो ये साधु प्रवृत्ति थे, तुम भगवान को मानते हो, हाँ बिल्कुल मैं तो जीवन भगवान के लिए है। तो भगवान भगवान कहाँ है, वास्तव में सब कुछ तो भगवान, तुम भगवान को मानते हो पर तुमको भगवान ने नहीं खिलाया, तुम्हारे भगवान तुमको भूखे रखे थे और मैंने तुमको खिलाया। तो बोले वास्तव में भगवान जानते थे, वो साधु बोले भगवान जानते थे कि तुम उनकी सेवा नहीं करोगे, इसीलिए भगवान ने मुझे आपके घर में भेजा और आपके माध्यम से मुझे खिलाया जिससे कि आप भगवान की सेवा कर सके। आप समझे क्या है कि भक्त है ये देखता है कि नास्तिक भी कार्य कर रहा है, नास्तिक सोचता है कि मैं खिला रहा हूँ और वो नहीं खिला रहा है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जब जो कम्युनिस्ट लोग रशिया में राज्य कर रहे थे, तो जब राज्य कर रहे थे रशिया में, तो उन्होंने क्या किया, वे ये जो सभी के भगवान विश्वास करने वाले लोग थे, क्रिश्चियन थे वहां पर अधिकांश रूप से, तो चर्च में जाते थे और चर्च में जाके वो प्रार्थना करते कि हे भगवान उसका ब्रेड दो। तो कम्युनिस्ट लोग आते थे, क्या कर रहे हैं आप, जाके भगवान को प्रार्थना करते, ठीक है जाओ जाकर के आपको प्रेरित किसके लिए प्रार्थना की प्रेरित के मिला प्रेरित आपको
नहीं मिला
तो ठीक है आप हमसे प्रार्थना करो एक अभी शुरू हमारा आप हम प्रेरण को दे दो और वो बड़ा ट्रक ट्रक भर के प्रेरित लाके रखते थे ये लोग और हम बोलते थे अभी देखो कौन बड़ा है तुम्हारे तो भगवान बड़े या हम बड़े भगवान ने कुछ पूरा नहीं किया आपने पूरा किया तो आप बड़े तो प्रभुपाद जी बोला इस तरह से बोलो नास्तिक बन जाते तो प्रभुपाद जी बोलते हैं शूटर की भावना है क्योंकि ये कम्युनिस्ट लोगों ने ब्रेड लाया कहां से उन्हें खुद तो उत्पादन नहीं किया निसर्ग में गया निसर्ग कहां से आया भगवान से आया तो क्या है वास्तव में ये लोग समझ नहीं पाए कि वास्तव में वो चर्च के अंदर गए और उन्होंने भगवान को बोला भगवान मुझे ब्रेड दो और उन्हीं भगवान ने वो चर्च से बाहर आ गए तो कम्युनिस्ट के माध्यम से ब्रेड दे दिया तो वास्तव में सर्व कारण कारणम तो इसलिए इस भौतिक जगत में कोई भी चीज किसी की नहीं है सब कुछ भगवान का ही है ओके व्यक्ति का व्यक्ति का अपना हिस्सा तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कैसे कि इस भौतिक जगत में लोग इतने सारी चीजें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जैसे अलेक्जेंडर जब भारत में आए थे तो फिर उन्होंने सुना कि ये योगी है ये बड़े योगी साधु लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं तो फिर वो उससे मिलने गया और फिर उसको बोला तो कि तुम क्या चाहिए बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं मैं राजा हूँ शहंशाह हूँ क्या चाहिए बोले कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें सूरज की रोशनी दे रहा हूँ तुम बाजू को हो जाएगा सूरज की रोशनी आती तो वायर ऑब्स्ट्रक्टिंग का उसको गुस्सा आ गया तो भाई ने सोचा सही में तो कुछ नहीं चाहिए तो मुझे क्या तुम क्या कर रहे हो वो साथी ने सोचे तो मैं सारे विषय को जीतने जा रहा हूँ तो हंसने लग गए क्यों हंस रहे सारे विषय को जीतने जा रहा हूँ और लगभग सारा विषय जीत ही गया है मैंने तुम सारे विषय जीतने जा रहे हो ये विश्व का एक छह फीट का जो जगह है वो तुमको जीत लेगा क्योंकि तुम्हारा शरीर उसमें दफना दिया जाएगा तो क्या फायदा है तो फिर वो अलेक्जेंडर इतना इम्प्रेस हो गया वो साधु को तुम्हारे साथ चलो कि मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूँ तुम्हारे चलने के लिए तुम चलो मेरे साथ साधु सोचा कि मैं सो आध्यात्मिक ज्ञान इधर से जाने लगे उसका जब जा रहे थे तो वो जाने लगे उसके तो उनको बीमारी हो गई तो जब बीमार हो गए तो क्या किया उन्होंने गाय की जो गोबर होता है गोबर से एक छिटा बना ली और खूब चढ़ गए और ना शरीर काट कर और ये देखकर इतना भ्रम आश्चर्यचकित हो गया बिल्कुल मृत्यु का भय नहीं और स्वेच्छा से वो मृत्यु को स्वीकार कर ली और उसके बाद में जब वापस जा रहे थे अलेक्जेंडर तो क्या हो गया उन्होंने अनेक राज्यों को जीता उसने अनेक राज्यों को जीता था पर जब वापस जा रहे थे तो वही राजा के राजा ने पुनः राज्य जीत लिया जब वापस जा रहे थे तो क्या हो गया वह जो सारे राज्य जीते थे उनसे वापस युद्ध करना पड़ा उसका तो तभी एक युद्ध में बड़ा घायल हो गया जब घायल हो गया तो सेल्यूकस और पॉलेमियस
जो
दो सैनिक थे तो मुझे मृत्यु आ रही थी तो उसने बोला कि जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मुझे दफनाओगे तो आप मेरे हाथ फैला के और सारे उंगलियां निकाल के मुझे दफना उंगलियां फैला के दफना ऐसे क्यों बोले कि मैंने ये भारतीय साधुओं से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सीख सीखी है पर वो बहुत देर से सीखी है और मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की वो दुनिया के लोग वापस न करें तो क्या गलती बोले कि मैं इतना सारा विश्व जीतने का प्रयास किया पर अभी मैं जा रहा हूँ तो मेरे हाथ फैले हुए हैं और हाथ खाली है कुछ भी चीज उस हाथ में लिया कि मेरी संपत्ति आप मेरे कब्र पर लेके आ जाओ और फिर वापस ले जाओ इसीलिए व्यक्ति में दुनिया से सोच सकते हैं लोग कि मैंने ये प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है पर क्या है ये सब शाश्वत नहीं है सब क्षण भंगुर है आप जानते हैं प्रभुपाद जी की कहानी प्रभुपाद जी में अभी को नॉर्थ इंडिया में एक जगह पे गए थे वहां पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए स्वामी जी तो मुझे देखिए मेरा इनका बड़ा ग्लास का फैक्ट्री है तो अच्छा ग्लास तुम ग्लास कैसे बनाते हो लेकिन हम जो रेती है रेती से ग्लास बनाते हैं तो रेती कहाँ से आती है कहा से आता है कृष्ण से आता है और फिर वो बोले कि
इसका मतलब है एक लास्ट फैक्टर तुम्हारी नहीं है, कृष्ण की है और तुम कृष्ण से चोरी कर रहे हैं।
थोड़ा वो चौंका गया
पर स्वामी जी मैं थोड़ा डोनेशन भी लेता हूँ।
ठीक है, तुम बड़े चोर नहीं हो, छोटे चोर
छोटे चोर हो, चोरी कर रहे हो थोड़ा वापस भी कर रहे हैं।
तो वास्तव में तेन तेन भुंजीता माँ वजह करते सुनना बहुत ही जगह संपत्ति है वो तो कुछ भी हमारे लिए नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी ये एक तत्व बताते हैं और फिर दो उदाहरण देते हैं इसके लिए, एक मानव समाज से एक जानवरों के समाज। जानवरों के समाज से उदाहरण क्या देते हैं, कहते हैं जो गाय है या शेर है, बोलते हैं जो शेर है वो कभी घास नहीं खाएगा। क्यों घास नहीं खाएगा? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है, वो जो निसर्गजन है उसके लिए अन्न दिया है वही स्वीकार करेगा। और गाय कभी मांस नहीं खाएगी कितनी भूख हो, क्योंकि वो निसर्ग ने जो अन्न दिया है वही स्वीकार करते हैं। पर वो मानव कैसे हैं? मानव सब कुछ खाते हैं,
जो
शाकाहार भी करते हैं मांसाहार भी करते हैं सब कुछ खाते रहते हैं। तो ये मानव जीवन की दुर्भाग्य है। तो तेन तेन जो बताया है भी जो इससे आपका कोटा है वही स्वीकार करो जो आपको दिया गया है। तो वास्तव में मानव जीवन में जो वैद्य शास्त्रों में कभी कभी मांसाहार का वर्णन आता है, जैसे हम जानते हैं कि अगर आप कलकत्ता जाओगे तो कलकत्ता में काली का मंदिर है और वहां पे बकरियों को वगैरह मार के वहां पे उनका बलि चढ़ाया जाता है। तो ये जो है यह वैद्य शास्त्रों में ऐसे श्लोक आते हैं, पर ये श्लोक जो है ये एक झूठ है, ये आदेश नहीं है। जैसे अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और व्यक्ति को डायबिटीज है तो डॉक्टर बोलते हैं आपको आपको शक्कर पूरा बंद कर दो और रोज आप ये दवाई सुबह दोपहर शाम को लो। डॉक्टर मैं शक्कर के बिना जी नहीं सकता, मैं शक्कर छोड़ना पड़ेगा, मैं शक्कर के बिना जी नहीं सकता, शक्कर चाहिए मुझे। हफ्ते में एक बार लाता है और तो क्या बोलता है सब लोगों को, डॉक्टर ने कहा मुझे कि शक्कर खरीदी, डॉक्टर ने कहा शक्कर खरीदी खिलाओ शक्कर। डॉक्टर ने आपको डॉक्टर ने जब दो चीजें बताई, शक्कर खाने के बारे में बताया और दवाई लेने के बारे में बताया, तो दवाई लेने के बारे में जो बताया है वो क्या है, वो आदेश है, और शक्कर खाने के बारे में जो बताया वो क्या है, वो छूट है। तो ईटिंग शुगर इज टेकिंग मेडिसिन इज अ इंस्ट्रक्शन, टेकिंग शुगर इज अ कंसेशन। तो क्या है वैदिक शास्त्रों में ऐसे वर्णन आता है कि आप मांस काली को अर्पण करके खा सकते हैं, पर यह आदेश नहीं है, यह क्या है, झूठ है। कि जो लोग मांस को छोड़ ही सकते हैं उनको बोले ठीक है आप 15 दिन में एक बार अमावस्या के दिन जो बकरी है उसको काट के 7 विभाग करके और 6 विभाग दान में लेके 1 विभाग आप खा सकते हैं, ये छूट है। पर दुर्भाग्यवश से आज क्या करते हैं, वो छूट को उन्होंने क्या कर लिया है, छूट को आदेश बोला कि काली पूजा करने के लिए आपको जानवर को मारना चाहिए, ये पूर्णतः गलत है। तो ऐसे अनुमति है वैदिक शास्त्रों में पर ये आदेश नहीं है, छूट है। और ये तमोगुण के लिए है, तत्वगुण के लिए मांसाहार पूर्णतः वर्जित है। इसीलिए जो शास्त्र लोग होते हैं वे मांसाहार करते हैं, पर जो वैष्णव है शास्त्र की जो देवी की पूजा है वो सब तमोगुण में चलती है, पर जो वैष्णव है तो मांसाहार नहीं करते हैं। तो अगर किसी को मांसाहार करना है तो वास्तव में कोई डॉक्टर है कि वास्तव में हमको अगर भगवान चाहते कि मांसाहार ना करें तो हमको मांस खाने के जो बायोलॉजी में कहते हैं कैनाइंटीज बोलते हैं मांस खाने के दांत क्यों भगवान ने दिए, तो हाँ भगवान दांत दिए हैं मांस खाने के दांत हैं और वो कितने हैं, सिर्फ 2 है। हमारे टोटल दांत कितने हैं, 25, तो सिर्फ 2 दांत जो है मांस खाने के लिए। मतलब क्या है, अगर मांस भी खाना है थोड़ा सा मांस खाओ और बाकी क्या है शाकाहार, और वो भी अगर त्याग कर सकते हैं तो अच्छा है। तो वैदिक शास्त्र में मांसाहार का पुष्टि नहीं की है, उसकी अनुमति दी है छूट के रूप में, और ऊंचे स्तर पर खंडन भी बताया गया है। तो कई बार खासकर कई मुस्लिम लोग हैं वो प्रचार करते हैं, वो वेदों से कुछ लोग निकालते हैं कि ये मांसाहार के बारे में बताते हैं, ये इसके बारे में बताते हैं, तो कुछ लोग भक्त भ्रमित हो जाते हैं ये कैसे आ गया है, वेदों शास्त्र में क्या कैसे बताया मांसाहार के बारे में। तो श्लोक है या श्लोक है, श्लोकों के बारे में हम चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हमें समझना चाहिए कि वैदिक शास्त्रों में एक प्रगतिशील योजना बताई,
तो मांसाहार के बारे में श्लोक है और मांसाहार के खंडन के बारे में श्लोक भी है। जैसे और कई बार ये जो पाश्चात्य लोग जो भारत में आए तो उन्होंने जब मुस्लिम लोग थे भारत में तो उन्होंने वैदिक संस्कृति का नाश करने के लिए आके बहुत से मंदिर तोड़ फोड़ दिए। और जब अंग्रेज लोग भारत में थे उन्हें मंदिरों से तोड़ फोड़ नहीं थी, उन्होंने क्या किया जो लोग मंदिर में जाते थे उनकी श्रद्धा तोड़ फोड़ दी। और श्रद्धा कैसे तोड़ फोड़ दी, जो वैदिक शास्त्र थे उनका गलत अर्थ बताकर, गलत अर्थ बताकर। तो जैसे मैक्स लर्नर के बड़े विख्यात पंडित थे, उपाध्याय पंडित, तो उन्होंने क्या किया वैदिक शास्त्र, अंग्रेजी सरकार बड़ी बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा कि सारे भारत में हम शिक्षण देंगे और संस्कृत अंग्रेजी में देंगे और हम आपको बाइबल में, हम आपको क्रिश्चियन बनाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, हम आपको बाइबल सिखाएंगे और हम आपको आपके शास्त्र भी सिखाएंगे, पर किसमें सिखाएंगे अंग्रेजी में सिखाएंगे। और अंग्रेजी में ऋग्वेद यजुर्वेद भगवद्गीता भागवत उस समय था ही नहीं, किसने ट्रांसलेट किया था, उनके ही पंडितों ने ट्रांसलेट किया होता, तो फिर क्या होगा, सारे भारतीय लोग पढ़े उन्होंने भारतीय वैदिक शास्त्र पर जब उन्होंने ट्रांसलेट किया था तो पूरा गलत किया था। जैसे मैक्स लुथर के वक्तांत में आता है एक जगह पे कि सन्यासी को अपने परम गति प्राप्त करने के लिए रोज गाय का वध करना चाहिए। अभी चलो कोई पढ़ेगा तो शौक हो जाएगा, सदमा लग जाएगा, कैसे संभव है। पर वास्तव में वो श्लोक क्या है कि अभी गो शब्द है उसका एक अर्थ है गाय, दूसरा अर्थ है इंद्रिय। तो जो मूल श्लोक क्या है कि सन्यासी को यश प्राप्त करने के लिए रोज अपने इंद्रियों का दमन करना चाहिए, तो इंद्रियों का दमन रोज करना चाहिए। तो इंद्रिय का अर्थ है गो, इंद्रिय के संस्कृत शब्द है गो और गाय के शब्द है गो। तो उन्होंने क्या भाषांतर कर दिया कि रोज गाय का वध करना चाहिए, पूर्णतया गलत भाषांतर है। और ऐसे भाषांतरों से लोगों की इतनी श्रद्धा डिस्टर्ब हो जाती है, चंचल हो जाती है उससे। तो हमें भले ही कोई कुछ श्लोक बोलता है तो सबसे पहले बोलना चाहिए कि हाँ वैदिक शास्त्र में हर प्रकार के श्लोक मिल जाए, क्योंकि वैदिक शास्त्र कल्पतरु है। पर क्या वो वैदिक शास्त्र का सर्वोच्च उद्देश्य है? नहीं है, सर्वोच्च उद्देश्य नहीं है। वास्तव में वैदिक शास्त्र ऐसे है कि जो भी आपको निकालना है उसके लिए आप श्लोक निकाल सकते हैं। वैदिक शास्त्र पर वैदिक शास्त्र का सर्वोच्च उद्देश्य है। सुबह जो सवाल पूछा था ये रोजी ने कि आप बता रहे थे कि कर्मकांड जो है उस निवान 97% है, हाँ वैदिक शास्त्र में है, पर वैदिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है? जो प्रभुपाद जी का हम कहते हैं वैदिक शास्त्र सिखा रहे हैं, मतलब क्या वैदिक शास्त्र का अंतिम उद्देश्य सिखा रहे हैं, बाकी सब जो है। प्रभुपाद इज नॉट जस्ट गिविंग अस वैदिक कल्चर, प्रभुपाद इज गिविंग अस द बेस्ट ऑफ वैदिक कल्चर। प्रभुपाद हमें वैदिक संस्कृति दे रही है, वैदिक संस्कृति की पराकाष्ठा है, सर्वश्रेष्ठ जो है तो वो दे रहे हैं। तो दूसरा उदाहरण है अभी पृथ्वी पर मानव संपत्ति की हिंसा, मतलब क्या हो रहा है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि मानव के आहार में हिंसा, ये उदाहरण दिया उन्होंने कि कैसे गाय कभी मांस नहीं खाती है, शेर कभी घास नहीं खाता है, पर मानव दोनों मांस और घास दोनों खाते हैं, तो ये हम तेरे देखते हैं भिन्नता का पालन नहीं करते हैं। तो दूसरा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यह पृथ्वी है, तो उस समय जब प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे, कभी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट इनमें बहुत युद्ध चल रहा था। प्रभुपाद जी दोनों सोच रहे हैं कि जमीन हमारी है, जमीन हमारी है, पर वास्तव में जमीन किसकी है, भगवान की है। तो दोनों अगर संघर्ष करते हैं कि हमारी जमीन है हमारी जमीन है, तो किसी को यश प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी जब कलकत्ता में थे, जैसे आप जानते हैं कलकत्ता में लगभग 30-35 साल तक कम्युनिस्ट का राज था, अभी कम्युनिस्ट चले गए हैं। और कैसे कम्युनिस्ट चले गए, अभी नया जो नए चीफ मिनिस्टर जो आए हैं उन्होंने योजना बनाई है कि मायापुर को बहुत डेवलप करना है, तो उन्होंने 700 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया अभी कि मायापुर से डायरेक्ट ट्रेन तिरुपति को होगा, मायापुर से डायरेक्ट ट्रेन वाराणसी को होगा, मायापुर से डायरेक्ट ट्रेन बद्री सारे भारत के हिंदुस्तान में डायरेक्ट ट्रेन होगी, वहां से उसको 4-5 साल लग जाएंगे, उसके बाद मायापुर की प्रगति होगी, वो एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तो पर जब जो कम्युनिस्ट लोग थे ये प्रभुपाद जी के बारे में तभी परेशानी कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सत्संग कार्यक्रम किया था, और सभी प्रभुपाद जी को ऐसे धमकिया फ्लाई और डाय कि आप ये सारा कार्यक्रम बंद कर तो भाग जाओ ना हम आपको मार डालेंगे फ्लाई और डाय। प्रभुपाद जी बिल्कुल निर्भय थे, उन्हें कार्यक्रम चालू रखा। ये कम्युनिस्ट के कुछ लोग थे तो बड़े क्रोधित होकर वहां पे आ गए, और जब वो आ गए वहां पे तो प्रवचन के पहले प्रभुपाद जी किसी पंडाल में उनसे मिले, और प्रभुपाद जी इतने बुद्धिमान थे बोले कि आप कम्युनिस्ट हो, कभी कम्युनिस्ट है, आप कम्युनिस्ट है कैसे क्या बोले कि हम भी आप कहते हैं कि जो लोग संपत्ति जकड़ लेते हैं और खुद के नाम में लेते हैं और ये गलत है, हम भी स्वीकार करते हैं। तो वो कि आप भी कम्युनिस्ट, हम भी कहते हैं कि संपत्ति व्यक्तियों को जकड़ नहीं करनी चाहिए, पर क्या है हमारा जो कम्युनिज्म है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म है, आध्यात्मिक कम्युनिज्म है। आपसे कम्युनिज्म में सिर्फ एक चीज डाल दो, आप कहते हैं कि सारी संपत्ति सरकार की राष्ट्र की है, हम कहते हैं राष्ट्र कहां से आता है, भगवान से आता है, सारी संपत्ति भगवान की। इस तरह इतना मधुर है लोगों ने समझा दिया उनको, उनको समझ लीजिए स्वामी जी कम्युनिस्ट है और चले गए तो कार्यक्रम अच्छा होने लगा। प्रभुपाद जी बड़े बुद्धिमान थे विचार जी, तो कम्युनिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो युद्ध करते रहे, जमीन हमारी है जमीन हमारी है, तो फिर कभी उनका फल नहीं होगा। जो भागवत के बारहवें स्कंध में आता है भूमि पिता नाम का स्कंध है, तो भूमि देवी हंस रही है, इतने सारे राजा है और जीतने का प्रयास किया और चले गए लाश बन गए, और क्या है मैं यही पे हूँ, तो जो मुझे जीतने का प्रयास करता है वो बड़ा मूर्ख है। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में बोलते हैं कि शाकाहारी बनना ये अच्छा है पर जीवन की परिपूर्णता नहीं है। तो मानव के आहार में हिंसा क्या है, ये मांसाहार है, पर मांसाहार तक के साकार से आ गए हम तो वह पर्याप्त नहीं है। तो प्रभुपाद से एक बार व्यक्ति आया उनसे, आपने अगर पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पढ़ा है तो उसमें आता है ये बॉक को है नाम व्यक्ति का, वो आया तो मुझे स्वामी जी मैं भी शाकाहारी हूँ, बंदर भी शाकाहारी हो तो क्या बड़ी बात है, लग गया। कभी उस समय शाकाहार बहुत कम था अमेरिका में वगैरह, क्योंकि उस समय के लोगों को शाकाहारी कुकिंग कैसे करना है पता ही नहीं था, और उनको लगता था कि अगर हम शाकाहार बनना है तो मतलब हमको सिर्फ शाक खाने पड़ेगी, सब्जियां खानी पड़ेगी, कच्ची सब्जियां खानी पड़ेगी, उन्हें शाकाहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वास्तव में अभी अमेरिका में यूरोप में शाकाहार बहुत बढ़ गया है, और जो पहली संस्था थी जिसने शाकाहार पर बड़ा जोर दिया, भारत से बहुत से स्वामी गए बहुत से गुरु गए, पर किसी ने शाकाहार पर इतना जोर नहीं दिया जितना प्रभुपाद जी ने दिया, और प्रभुपाद जी ने केवल जोर दिया, प्रभुपाद जी ने शाकाहारी कुकिंग कैसे करना है स्वयं सिखाया। तो हैगरे प्रभु लिखते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है, हैगरे प्रभुपाद जी के पहले दिनों के शिष्य थे, उन्होंने किताब लिखी हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, हरे कृष्णा विस्फोट, उसमें लिखते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि स्वामी जी जो थे उनका अलग अलग व्यंजन कैसे पकाना है उसका ज्ञान उतना ही विशाल था जितना उनके संस्कृत श्लोकों का ज्ञान विशाल था, इतने सारे व्यंजन उनको पता थे। तो इस्कॉन के कारण प्रभुपाद जी के कारण भी शाकाहार बहुत बढ़ गया है, और उस समय शाकाहार बहुत कम था, इसीलिए व्यक्ति बोला था शाकाहारी हूँ, बड़ा आनंद गर्व कर रहा था, प्रभुपाद जी ने क्या गर्व कर रहे हैं बंदर भी शाकाहारी है, शाकाहार अच्छा है पर शाकाहार से अटकना नहीं चाहिए हमें, वास्तव में शाकाहार में पाप है, क्यों फिर भी हम हिंसा कर रहे हैं कर्म लग रहा है तो भगवान को भोग लगाते हैं तो वह सिद्ध हो गए। तो प्रभुपाद जी यहाँ डायरेक्टली तात्पर्य बोलते हैं कि ईशा वास्ते को आप अपने जीवन में कैसे उतारोगे, अगर आपको उतारना है मतलब आपका जो अन्न है भगवान को भोग लगा के हिंसा तभी ईशा वास्ते आपके जीवन में उतार रहे हैं, तो जीवन में उतार नहीं रहे हैं। तो मानव जीवन में मानव जीवन की परिपूर्णता क्या है, सिर्फ शाकाहारी बनना अच्छा बन के रहना ये नहीं है, भगवान की भक्ति करना वह मानव जीवन की परिपूर्णता है। तो आखिरी पॉइंट का मैं करता हूँ, तो ये लोग बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करने की जरूरत क्या है, आप सब लोग कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा दुखी है, पर ये क्या ये दुख तो है इस बहुत ही जगत में, कभी खुशी कभी ऐसा दुनिया में चलते रहता है, और कभी दुख नहीं आएगा तो सुख का स्वाद कैसे मिलेगा हमको, आप सुना ऐसे दुख नहीं आएगा तो सुख का स्वाद कैसे मिलेगा, दुख जरूरी है ताकि सुख का स्वाद अच्छा हो सके। तो अगर कोई ऐसे कहता है इसका आप सरल खंडन कर,
ठीक है
अगर आपको लगता है कि दुख जरूरी है सुख का स्वाद लेने के लिए तो कितने लोग स्वेच्छा से दुख स्वीकार करते हैं, और कोई बिजनेसमैन है तो चार साल से उसको प्रॉफिट मिला आपने बिजनेस में, चार साल प्रॉफिट हो गया इतना सुख मिलेगा, सुख का स्वाद नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस साल में मेरे फैक्ट्री को जला देना,
दुख मिलेगा कि उसके बाद अगले साल सुख मिलेगा, कभी खुशी कभी गम।
कोई ऐसे करेगा, कोई विद्यार्थी हर बार अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, इस बार तो मैं जॉब देता ही नहीं हूँ ताकि फिर नहीं जाऊंगा, फिर अगले बार जब पास होऊंगा अच्छे मार्क्स में तो आनंद मिलेगा अच्छे मार्क्स। अरे तो अगर दुख जरूरी है सुख के भोग के लिए, तो लोग स्वेच्छा से स्वयं की योजना से दुख खुद को मिला रहे, पर कोई भी खुद को दुखी नहीं कर रहा है, हर एक व्यक्ति दुख को टालने का प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम सब चाहते नहीं, हम सब दुख को चाहते नहीं है, पर दुख वैसे भी आता है, इसीलिए हम ऐसा ऐसा भ्रांत धारणा करते हैं, कभी सुखी कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, ऐसे नहीं है। वास्तव में हम जो शिक्षा आश्रम आते हैं, पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सपना पति परम परम विजयते श्री कृष्ण, कि जो भगवत भक्ति है ये पूर्णामृत है। तो हमें हमारा जो स्वभाव क्या है, कभी खुशी कभी गम ऐसे अनुभव करना नहीं है, हमारा स्वभाव है सदैव आनंद अनुभव करना। और सदैव आनंद कैसे अनुभव करते हैं, जब हम भौतिक जगत के परे भगवान धाम में जाके भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से व्यक्ति कहता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं किसी को हिंसा नहीं करता, कुछ बेईमानी नहीं करता, मैं भक्ति कर, पर मेरी भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे तो आपको भौतिक जगत के दुखों में भुगतना रहे, आपके चक्कर में फंसे रहेगा, भौतिक जगत भुगतने भौतिक दुख भोगने पड़ेंगे आपको। तो इसीलिए द पॉइंट इज टू रिकॉग्नाइज द सुप्रीम लॉर्ड, भोपाल जी बोलते कि शाकाहारी बनना जरूरी नहीं है, पर शाकाहारी क्यों बनना है, क्योंकि भगवान ने यह दिया है मुझे और भगवान ने वो दिया नहीं है मुझे, जो भगवान ने दिया है वह भगवान को भोग के रूप में अर्पण करके फिर स्वीकार करें, तो फिर वो वास्तव में शाकाहार नहीं, जिस रूपा जी कहते हैं हम शाकाहारी में नहीं है, हम कृष्ण भक्त हैं। तो इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं, तो हमारे व्यवहारिक जीवन में जब हम लेते हैं हमारा तेन तेन भूंजी था, दूसरों की चीजें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कभी क्या होता है, बाहर जा रहे होते प्रोग्राम को जा रहे हैं, हमारी चप्पल ले लेती है, तो क्या होता है हम किसी को चप्पल ले लेते हैं, और फिर कोई भक्तों वक्त आते हैं वो देखते हैं उनकी चप्पल नहीं है, तो किसी को चप्पल नहीं है, तो क्या होता है ये चप्पल गायब होने की परंपरा हो जाती है हमें, और फिर तो क्या होता है हमें खुद की चप्पल लेनी चाहिए, उसका नाम लिख लेना चाहिए, दूसरे के कपड़े लेना है, दूसरे चप्पल लेना, उसे कॉपी का कपड़े लेना चाहिए। तो क्या है तेन देखते न गुरजीता माँ वृद्धा करते सिद्धन, और दूसरों को एक देश प्रसाद देना ये अच्छी बात नहीं है, तेरा देखते न गुंजीता कि हजरत ना चाहिए, भगवान ने जो दिया है वो उनके लिए मेरे लिए है। तो इस तरह से ये पहला श्लोक बताता है कि भगवान को समझना है तो भगवान की योजना के अनुसार जीना है, और फिर अगले दो श्लोक में बताएंगे कि भगवान की योजना के अनुसार जिएंगे तो क्या होगा और नहीं जिएंगे तो क्या होगा। अगले श्लोक में बताएंगे जिएंगे तो क्या होगा, और उसके बाद तीसरे श्लोक में बताएंगे ऐसे ईशा वास्ते के तत्व के अनुसार नहीं जिएंगे तो क्या परिणाम होगा। तो दो तीन मिनट का सवाल है किसी को भी,
परमात्मा चाहते बताया कि ब्रह्मांड में भी आ सकते हैं, भगवान में भी जा सकते हैं, कृष्ण ठाकुर जी जो व्यक्ति परमात्मा साक्षात्कार कर लिया यानी रेगुलेशन ऑफ द परमात्मा गुरु, तो बहुत हाई लेवल है, उस लेवल से कैसे गिरेगा, क्यों गिरेगा, वहाँ पर क्या अपूर्णता रहेगी, पूरा परमात्मा स्वरूप का दर्शन कर लिया है।
अगर जिसने परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर लिया है तो वहां से पतन कैसे हो सकता है। वास्तव में हमारी जो इच्छा है वो प्रधान है, जैसे जो मुकुंद किला आती है चंद्र दामोद में, चंद्र वहां बोलते हैं कि मुकुंद को मैं कभी देखूंगा नहीं, फिर क्या 10 मिलियन लाइक्स कि 1 करोड़ जनता देखूंगा नहीं, उसका नाचे लगता है कि एक करोड़ में क्या देखूंगा भगवान को, तो तुरंत भगवान पत्ना उनको बुला देते हैं। तो उसके बाद में चैतन्य भागवत में वर्णन आता है मुकुंद बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान से, कहते हैं कि मुकुंद को कहते हैं मुकुंद वो कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आपने आपका सौभाग्य दिया है कि मैं आपको दर्शन कर सकूँ, पर वास्तव में आपका दर्शन करना ये सबसे बड़ा सौभाग्य नहीं है, क्योंकि आपका दर्शन तो रावण ने भी किया, कंस ने भी किया, हिरण्यकश्यप ने किया, पर आपका दर्शन करके वो आपका वध करने का प्रयास करते, तो आपके दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि आपकी भक्ति। तो कृपया मैं आप कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिया है और मुझे आपकी भक्ति दुआ। भक्ति के बिना दर्शन को ज्यादा फायदा नहीं है। तो मतलब अगर हमारी इच्छा भगवान की सेवा करने की नहीं है तो भगवान का दर्शन भी करेंगे तो भी दर्शन का फल नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स एक ने दर्शन करेंगे, दर्शन से कुछ तो अंतर्गत में प्रभाव होगा, पर हमारी इच्छा बदलना ये हमारे ही चुनाव है। जब हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन दिया और वो मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, काचम चिन्हन अभी देव अपना मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और उसके विपरीत उसी भागवत में कथा आती है पूर्वरव की, और आप जानते हैं पूर्वरव की कथा, वो उर्वशी के पीछे पागल हो जाते हैं और उर्वशी उनको छोड़ के चल जाती है। तो फिर वो बड़ा यज्ञ करते हैं विष्णु का, और जब विष्णु के सामने आते हैं स्वयं विष्णु का दर्शन कर रहे हैं और उसी से कहते हैं मुझे उर्वशी दे दो। तो इस अभी विष्णु जो परमात्मा ही है, विष्णु का हिस्सा जैसे परमात्मा है, तो कैसे विष्णु सामने है और वो उर्वशी की मांग कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जीवात्मा का ही चुनाव है। तो भौतिक इच्छा त्यागना या पकड़ने, तो भक्ति में आते हैं तो हमें एक अल्टरनेटिव हैप्पीनेस, एक दूसरे आनंद सुख के लिए दूसरा पर्याय मिलता है, पर वो पर्याय को स्वीकारना और भौतिक इंद्रत्व के सुख को त्यागना ये हमारी स्वेच्छा है। तो जो परमात्मा का दर्शन भी कर रहे हैं पर अगर वो अपनी स्वेच्छा का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो सोचते नहीं है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, सेवा करनी है, और बोलते कि भगवान में लीन होना है तो लीन हो जाएगा। इसीलिए कहना चाहिए कि हमारी स्वेच्छा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। और जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं रोज, तो वो सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, वो भाव है कि हे प्रभु जी आपकी सेवा में लगाओ। सेवा में लगाओ मतलब आश्रम हमारी सारी सेवा है, पर वो सेवा करने की इच्छा बड़ी बहुत इच्छा चली जाए और सेवा करने की इच्छा जागरूक हो जाए, तो वो भाव है। Thank you very much. We show up in Shakti. Tomorrow. Sunday time. Prabhupada ki, Gaur Bhaktivinoda ki, Gaur Prema.